أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان گرامی قدر، ہم رہنوردان وادی فرقان کا قافلہ احساس جو آج سے 7 سال قبل دل ملا کے تاروں کی سطور افزا قدمی چھاؤں میں جانب منزل روانہ ہوا تھا، قندیل آسمانی کی بصیرت افروز جہاں تاب روشنی میں زمزمہ تنگ نغمہ باز جذب و قید کی منزل طے کرتا، آج 1965 کی سال کے آخری دن اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغ منظر روشنی کے جگمگا کے مینار کی طرح سامنے نظر آ رہا ہے. ہمارا یہ کاروان صاحب پرانے کریم کی جوئے روان کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا. وہ جوئے روان جو آنسو افلاس سے تاران کی چوٹیوں پر جلوہ بار اور زہر ریز ہوئی، اور وہاں سے دامن ارض کی وسعتوں پر ہر چہار سوکھ پھیل گئی. یہ مسجد خرام جوئے بار دشت و صحرا میں زمین سابعہ کو لالا زاروں میں تبدیل کر کی اور خسو خاصاب کو اپنی موج میں لپیٹ میں بہا کر آگے بڑھتی چلی گئی. گاہ اپنی خطیف افزا روانیوں سے دلوں کے سجائے نادریدہ کا منہ چومتی اور قلوب کی جھوٹی ہوئی صافوں کو آئینہ دکھاتی، اور گاہ کاف بر بہا ٹکرانیوں سے بڑے بڑے سرکش اور تناور درختوں سے جڑ سے پھیرتی، تین و آن سے بے نیاز ماحول سے مستغنی گرد و پیش سے غیر متاثر اپنی ذات میں مست جانب منزل بڑھتی گئی. اس نور کی ندی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہمارا یہ کارواں آج اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں آخری منزل تک پہنچنے میں صرف 4-5 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے. اس زندگی بخش سفر کی تکمیل کی ہنگامہ خیز مسرت اور اس حسین و جمیل منزل کے حسین کی مسرت انگیز کیفیت میں میرے دل میں آج وقور جذبات کا ایسا تلاطم برپا کر رکھا ہے کہ الفاظ میرے حلق سے باہر نہیں آتے. لیکن مجھے آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ 4 قدم آج ہم طے کر کے منزل پر پہنچ کر ہی بند لیں. اس لیے اب آج کا درس سورہ النصر سے شروع ہوتا ہے، 30 پارے کی 110 سورت. حق و باطل کی وہ کشمکش جس کی داستان قرآن کریم کے ہر ورق کے مسلسل چلی آ رہی تھی، उसका आखिरी अल्टीमेटम साबका सूरत अल काफरून में दे दिया गया, जहां कह दिया गया कि आज इसके बाद तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारी रविश के नतायज जब तुम्हारे सामने आकर रहेंगे, मेरे प्रोग्राम के नतायज मेरे सामने आ जाएंगे। गोया ये ऐलान था इस बात का कि वो खेती जो इससे इतना अच्छा पेश कर गई गई थी, जिसकी तुखम रेजी 23 साल पहले से की गई थी, उसके बराबर होने का वक्त आ गया है। और दूसरी तरफ तुम्हारी वो तबाहियां जो गैर महसूस तौर पर अंदर ही अंदर आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी, उनके लिए भी वो वक्त आ गया है कि अपनी आखिरी सोलह सामानियों को तुम्हारे मताए हयात को खाकिस पर बना के रख दे। फैसला की घड़ी आ पहुंची है। सूरह अल काफिरून इस मतलब का एक अल्टीमेटम था, ये आखिरी ऐलान था। और इस आखिरी ऐलान के बाद अब इधर ये कहा जा रहा है कि राजा अनसुल्लाह वाली फत हो, सैयद खुदून की दीन अल्लाह अफवाजा, जरा सोचिए वो किसान जो छवा पेश कर या नौवा पेश कर, जिसने इतनी मेहनत से अपनी जमीन को संवारा, उसने तुखम रेजी की, फिर उसकी मुसलसल मेहनत और मुशक्कत का ये आलम कि हर सुबह दराती और रस्सी लिए खेत में चला जाता था, सारा दिन उस खेत में काम करता था, शाम को इसी तरह खाली हाथ वापस आ जाता था। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक माह नहीं, दो माह नहीं, और इसमें तो एक साल नहीं, दो साल नहीं, जिंदगी का इतना लंबा मुसलसल हिस्सा। इसमें आपने देखा होगा बाद मकामात ऐसे भी आए थे जहां हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि बारे इलाहा क्या मेरी जिंदगी इस कदो ताजी में डूब जाएगी और मैं अपनी मेहनत के समरों को अपने आसाम में नहीं देख सकूंगा। वहां ये कहा गया कि फितरत के कवानीन अटल होते हैं, वो किसी की जज्बात की रियायत नहीं करते, वो मोहलत का अरसा जो कवानीन ने मुतय्यन कर रखा है किसी की खातिर उसमें तफ्तीश नहीं की जा सकती। तुम्हारा काम मेहनत किए जाना है, ये फसल तब पकेगी, इसका फैसला हमारे कवानीन ही करेंगे। अलैकल बराग अलैनल हिसाब, लेकिन इतनी बड़ी खुशबख्ती थी इस दाइये इंकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आज की हयात तैयबा ही में फसल ये पक गई। और इस ऐलान अजीम के बाद कहा गया कि हाँ लो वो वक्त आ गया। लेकिन ये जो आखिरी वक्त आया है, इस निजाम ने यह भी एक अजीब और गरीब कैफियत अपने सामने रखा। दुनिया के हर प्रोग्राम में जब कामयाबी की घड़ी आ जाती है तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। जब फसल पक जाती है और उसके बाद अनाज घर में ले आते हैं तो फसल की ये मुद्दत खत्म हो जाती है। इसके बाद कुछ और करना बाकी नहीं रहता, लेकिन यहाँ तो सूरत ही कुछ और है। यहाँ तो जिंदगी जीव रवानस तो रवान खाहूत हयात तो मुसलसल कद्दो कागज का नाम है। इसमें तो कोई मकाम भी ऐसा नहीं आता जिसे आप आखिरी मकाम कह सकें। इस जिंदगी में तो एक तरफ पुराने जमीन के रूप से तो जन्नत भी इंसान के सिलसिला इर्तका की आखिरी मंजिल नहीं है, वो भी रास्ते में सिर्फ उकसाने का मकाम है। हकीकत ये है इस्लाम के अल्फाज में कि हयात गांव के सफर के सिवा कुछ और नहीं, बल्कि पहला मिसरा भी कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात गांव के सफर के सिवा कुछ और नहीं। जिस मकाम पर दुनिया के आम अंदाजे और आइन के मुताबिक इस प्रोग्राम को खत्म हो जाना चाहिए था, यहाँ से ये नजर आता है कि वहाँ से एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है। दो लफ्ज इसमें आए हैं, राजा नसरुल्ला, जब खुदा की नसरत ताईब आ पहुंची। तो हमारे जन्मों में तो ये है ना कि यूं ही गायब तौर पर खुदा की तरफ से कोई मदद आया करती है, वो फरिश्ते आया करते हैं, वो तलवारें चलाया करते हैं, वो तीर चलाया करते हैं। पुराने जमाने में फरिश्ते कहते थे, आज की इस दौर में हमने कह दिया कि वो सबक पगड़ियों वाले, सफेद अमामों वाले, तराहनों वाले, वो आके दुश्मन के बमों को राजी दरिया के अंदर बहा दिया करते हैं। हमारे जहनों में तो नफरत का यही तसव्वुर है ना, कुछ इस किस्म की चीज जिसमें इंसान की एक आत्मिक आदिश को दखल न हो। लेकिन अजीजा ने मन कुरान का तो एक लफ्ज हकीकत को सामने ले आता है और हमारे बातों तसव्वुरात की तब्दील कर जाता है। बात कही है जा नसरुल्लाह है, नसर के माने हमने तो नुसरत ही की है, नुसरत के माने हमने मदद की है, मदद के मुतल्लिक तसव्वुर ये पैदा किया कि वो कुछ गायबाना तौर पर होती है। ये तो लेकिन ये तो अरबी जुबान है, ये तो कुरान का इंतखाब है। आपको मालूम है कि ये नसरत के माने होते क्या है? इसके माने होते हैं भरपूर बारिश का बरसना। बारिश खुदा के कवानीन के मुताबिक बरसती है, लेकिन ये उसी को फायदा दे सकती है जिसने अपनी मेहनत से अपनी जमीन को इसके लिए संवारा हो, जिसने अपनी जमीन को खेती के लिए तैयारी नहीं किया, बारिश से कुछ फायदा नहीं दे सकती। बारिश से कुछ हासिल करने के लिए जरूरी है कि बारिश और जमीन के दरमियान के साथ एक रब्ता कायम किया जाए, वो आए ये उसे अपने सीने में समो दे, फिर उसके मुताबिक किसान मेहनत करे, फिर वो फसल पकती है। बारिश तो इतना ही करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि किसान ने जमीन न संवारी हो, वो घर में बैठा रहे, बारिश बरस जाए, वो फिर भी उठ के कुछ ना करे और उसकी कोठियां दानों से भर जाए, कभी ऐसा नहीं होता। ये ठीक है कि बारिश के बगैर भी खेती नहीं उगती, लेकिन महज बारिश के हो जाने से खेती नहीं पक जाती, उसमें खुद भी कुछ करना होता है। लिहाजा खुद ये नसरुल्लाह कह के ये बता दिया कि ये क्या चीज है जो अब आ रही है। तुमने अपनी जमीन को तैयार किया, बड़ी मेहनत की, बीज डाला, ऐन वक्त के ऊपर बारिश हुई, बारिश के बाद फिर तुम इस तक को धोने लग गए और उसके बाद ये खेती पकती है। समाजी रफ्तार और इंसान की जाती मेहनत जब इन दोनों में सही इम्तजाज हो जाता है तो फिर खुशगवार नतज मुरतब होते हैं। खाली अखदार समाजी या कवानी में खुदाबंदी जिनके साथ इंसान की मेहनत शामिल न हो आज खुद कोई नतीजा पैदा नहीं कर। और इसी तरह से इंसान की अपनी मेहनत अगर वो कवानी में खुदाबंदी के मातहत नहीं चलती फिर भी वो बादल हो जाती है। इसी को कुरान ने कहा है इलाय का हमेशा काम आने। लेकिन जब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक इंसान की सही बारिश फिर से ही नतज मुरतब होते हैं। इसलिए जिसे खुदा की नसरत या तईद या मदद कहा जाता है उसको तो एक मिसाल से और एक लफ्ज से बात वाजिया कर दी कुरान करीम ने राजा नसरुल्लाह। और इसके बाद है अलफत। हमारे यहाँ तो फतह का भी माने फतह लिया जाता है, तर्जुमा इसका वित्तीय किया जाता है, माने लिए जाते हैं कि दुश्मन के साथ जंग हुई और उसके बाद हमें फतह हासिल हो गई। तो गया ये एक आखिरी कड़ी होती है इस युद्ध जो होती फतह हासिल कर लेना, इसके बाद तो कुछ और बाकी नहीं रहता। लेकिन ये तो फतह का हमारा तसव्वुर है, न अरबी जुबान का तसव्वुर है, न कुरान करीम के इंतखाब का तसव्वुर है। अजीजा ने मन जैसा कि मैं गुज़श्ता 9 बरस में कैसा चला आ रहा हूँ, अरबी जुबान के ये अल्फाज, कुरान का ये इंतखाब, अगर इनके मानी को मुतय्यन कर दिया जाए कुरान के सारे मतालिब वाफी हो जाते हैं। फतह को उर्दू में ना लीजिए, इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी गलत है जो हमारे यहाँ तर्जुमे में कुरान करीम में हुआ है। कहा गया है कुरान में, मैंने अभी कहा था कि ये तो वो प्रोग्राम है कि जिसका सिलसिला गैर मुनकत है, मुसलसल आगे चलता है। फतह के माने होते हैं वो दरवाजे जो इससे बंद थे वो खुल गए, अब आगे बढ़ो। इतने अरसे तक था ये कि ये जो कसमकश में ये कारवान साउथ अपनी मनाजिल तय करता, ये आगे जाना चाहता था, रास्ते में मवाले आप दूसरों ने इससे फाटक बंद कर रखे थे। अब हुआ सिर्फ ये है कि तुम्हारी इतनी मुसलसल कद्दोकावज के जो कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक की गई है उससे ये दरवाजे खुल गए हैं। तो आप जानते हैं कि दरवाजे के खुलने से आखिरी मंजिल तो नहीं होती, इसके बाद तो एक नया सफर बढ़ता होता है, इसके बाद तो एक नया रास्ता सामने आता है। और यही चीज है जिसके कुरान ने सिखाया ये कि जिंदगी का प्रोग्राम किसी मकान पर जाकर भी उसकी आखिरी मंजिल नहीं आती। ये सका तो कहते ही इसी चीज को है, बढ़ते चले जाना, मुसलसल आगे बढ़ते चले जाना। इसलिए ये कहा है कि नसरत खुदाबंदी से ये जो कवानीन खुदाबंदी के साथ तुम्हारी मेहनत हम आहंग हुई इससे हुआ इतना ही है कि ये जो पहले दरवाजे बंद थे तुम्हारे रास्ते में दरवाजे खुल गए हैं, चलो आगे बढ़ो। इस दरवाजे खुलने से दरवाजों के खुल जाने से हुआ क्या, रायतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, दरवाजा खुला और तुमने देखा कि फौज दर फौज लोग अब इस निजाम खुदाबंदी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। खुद लफ्ज फौज में कसरत भी होती है और तेजी भी होती है, हजूम करके लोगों का तेजी के अंदर आ, दरवाजे खुलने से यह हुआ है। इससे पेशतर मवानियात की वजह से क्या कैफियत थी, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکہ کی زندگی کی قدوکاری اس قدر عظیم تھا یہ انقلاب خدا کا آخری نبی تھا جس کے بعد کسی اور نے آنا نہیں 23 سالہ ساری نبوت کی زندگی اس میں 13 سال کے عرصے کا ماحصل وہی تھا نا جو 312 کی تعداد میں بدر کے میدان میں آ گیا تھا. بنیادی اعداد و شمار کے اعتبار سے دیکھیے تو بڑی ہی سست رفتار کامیابی, اس لیے کہ راستے میں بڑے بڑے دروازے بند کھلے ہوئے نہیں تھے. آج اس بد و کاغذ کے بعد وہ دروازے جو چوکٹ کھلے ہیں تو ورائے تنہا سجد خدو رفی دین اللہ افواج آؤ. اب تو دیکھے گا کہ نظام خداوندی میں کس طرح لوگ جوش پر جوش داخل ہوتے ہیں. یہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ اور فوج در فوج اس میں داخل ہونے کی ہوگا, یہ سوچنے کی چیز ہے. ہمارے یہاں زور دیا جاتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے, دنیا کے فلاں حصے میں اتنے لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے, فلاں جگہ اتنے غیر مسلم ہندو بن گئے, اور یہ ساری چیزیں, اور اس کے خلاف پھر یہ کتاب تبلیغ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تبلیغ کرنی چاہیے, زبانی تبلیغ تو کچھ کام نہیں دے سکتی برادران علی. اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی شاید کئی دفعہ دہرایا, مغرب کے اچھے اچھے مفکر اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. میں نے جب بھی ان کے سامنے قرآن کا اسلام پیش کیا میں نے دیکھا یہ کہ تھوڑے سے وقت میں وہ اس سے مطمئن ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے سامنے آنی چاہیے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اعتراض ہمیشہ کیا, اور وہ اعتراض تھا کہ جس طرح سے مور اپنے پاؤں دیکھ کے پرس لیٹ لیتا ہے یہ کیفیت پیدا ہو گئی. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن کی تعلیم اگر یہ ہے تو قرآن کے ماننے والے قوم کی دنیا میں حالت یہ کیوں ہے. تعلیم تو یہ بتاتی ہے کہ وہ انتم العلوم, مومن بالائے ہر بالا تک, یہ اقوام عالم میں سب سے بلند ترین مقام کے اوپر یہ کام ہوگی. تعلیم تو اس کی یہ کہہ رہی ہے, اور اس قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ پست ترین ذلیل ترین درجے کے اوپر ہے دنیا کی اقوام میں. ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس پیغام اور اس نظام میں تو پھر اس قوم کی حالت یہ کیوں ہے. اچھے سے اچھے مفکر بھی جو مطمئن ہو جائیں گے نظری طور پر آپ کی اس تعلیم سے, وہ آپ کی قوم میں داخل ہونا کبھی پسند نہیں کریں گے. انہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد ہمارا بھی ایسے یہ بھی ہوگا جو ان کا ہو رہا ہے. وہ کیوں آئیں گے آپ کے اس دن میں؟ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ اس کے بعد تو دیکھے گا کہ کس طرح فوج در فوج لوگ اس کے اندر آتے ہیں. یہ کیسے آئے تھے؟ وہ نظام قائم ہو گیا تھا جس نظام کے درخشندہ نتائج نے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھیے کس طرح سے ایک اونٹ چرانے والی کھجوروں کی گٹھلیوں پر گزارا کرنے والی قوم کیسے اور کس طرح کی تحویلوں کی مالک بن گئی ہے. جب یہ کر کے دکھا دیا جب خلو رسی دین اللہ افواجا, اس کے بعد تو فاٹک کھل جاتے ہیں. اس کے بعد کسی پر لیگ کی ضرورت ہی نہیں رہتی, کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. آفتاب آمد دلیل آفتاب, نظام کے محسوس درخشندہ مری نتائج ساری دنیا کے لیے وجہ کشف و جاذبیت ہو جاتے ہیں. दुनिया खींच के उसकी तरफ आ जाती है। और अगर बताए ये कुछ नहीं बता रहे, आप लाख जुबानी कहिए कि मेरे पास एक चीज है, देखिए वो क्या से क्या कर देती है। अगर उसके नतायज ये नहीं बता रहे तो कोई शख्स आपकी बातों में नहीं आएगा। ये जो आज आपकी हालत है कि दुनिया की इस कदर गैर मुस्लिम अकवाम रोज ये हमसे लाते हैं कि इतने ईसाई हो गए और इतने हिंदी हो गए, उसकी वजह ये है वो कौन सी कशिश और जगत है आपके अंदर कि कोई आपकी तरफ खींच के आए। ये जो कुछ हुआ था इतने अरसे में वो ये था कि ये निजाम कायम हुआ, वो निजाम के जिसके मरकजी इज्तिमा यानी हाजी के लिए कहा यह गया कि सारी दुनिया के लोगों को आवाज दे दो कि आओ यहाँ काहे के लिए, ले जा शहदू मना किया लहुम, ताकि वो अपनी आंखों से देखें कि ये निजाम उनकी मनफत के लिए क्या कुछ कर रहा है। जब कोई आगे देखेगा कि कल इस कौम की ये हालत थी और आज वो इस कदर सरफराजियों और सरबुलंदियों के मकाम बुलंद पे पहुंच गई, जब वो ये देखेगा तो अपने ही लिए नहीं, ये तो नौ इंसानी के लिए इस कदर मनफत बस काम कर रहा है ये निजाम, तो कोई पागल ही फिर होगा कि जो इस निजाम के अंदर ना आए। आपको तो जुबान से कहने की जरूरत ही नहीं खेत रहती, निजाम के दृष्टिंदा नतायज खुद लोगों को फेंक लेते हैं अपनी तरफ। यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, खुदा की नसरत आ गई, फतेह हासिल हो गई, इसके बाद तो आप देखेंगे ना कि दुनिया की हर कौम में आगे ये होगा कि आप बाजे बजाओ, जलसे करो, जश्न होने चाहिए। रावी ऐश लिखता है मौज हो गई, अब फतह हासिल हो गई, फतह के बाद तो आप समझते हैं कि किस कदर ये जश्न होते हैं, फिर उसके बाद तो कुछ करने की बात ही नहीं रहती। लेकिन जहां तो जैसा मैंने कहा, फतह तो एक नई मंजिल का दरवाजा खुला है। कहा कि जब ये सूरत हो मिस्र पे खुदाबंदी भी आ जाए, यूं फतेह भी हासिल हो जाए, दुनिया फौज दर फौज इस दीन के अंदर दाखिल होने शुरू हो जाए, तो फिर क्या करो, ऐश करो, बाजे बजाओ। एक इनकलाबी प्रोग्राम जो है वो ये कुछ नहीं करता। सुनिए अजीजा ने मन, इस मकाम पे क्या करो, जब ये कुछ हासिल हो जाए, फसब्बे बिहम्दे रब्बे, खुदा के इस निजाम को वजह हम्द व सताइश बनाने के लिए पहले से ज्यादा सरगर्म अमल हो जाओ। मुझे मैंने एक दो दस पहले भी ये कहा था कि ये तो इसकी वादियां ही अजीब है। मकसद इसका अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। फतेह नुसरत हासिल हो रही है, इसके बाद कोई चार दिन भी रेक्रिएशन के नहीं मिल रहे। जब ये हो फसब दे, आप देखिए ये किस तरह हे आई है इसे, फसब दे बेहम दे रब दे, तो इसके बाद इसे और वजह हम लोग सताइश बनाने के लिए ज्यादा तेजी से सरगर्म अमल हो जाए। और देखो पहली घाटियां भी कुछ कम खतरनाक नहीं थी, लेकिन कामयाबियों और कामरानियों के बाद जो घाटियां आया करती हैं वो भी बड़ी लगते संगेज हुआ करती हैं। लिहाजा वास्तव से हर वक्त इन खतरनाक घाटियों से बचने के लिए सामान्य हिफाजत तलब करते रहा हो जाते। अब इसको तुमने मेंटेन भी करना है, ये हासिल करना ही कोई बात नहीं थी, ये तो हुआ। इसके बाद अगली मंजिल आई, ये जो फौजदार फौज अंदर आए हैं इनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना होगा। इतनी बड़ी ममलकत जो वसी हुई है, इस ममलकत के लिए ये निजाम खुदाबंदी कि जिसकी मिसाल और नजीर दुनिया में कहीं और नहीं है, इसको मुतशक्किल तो तुमने किया है, इसके क़याम और इसके काम के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही अब कामयाबियों के बाद नई किस्म की घाटियां आएंगी तबाहियों की। और आप जानते हैं जद्दोजहद और कोशिश के दौरान में इतनी खतरनाक घाटियां नहीं हुआ करती जितनी कामयाबियां हासिल होने के बाद आया करती हैं। कौमों की तबाहियां तो ज्यादा कामयाबियों के बाद हुई हैं। कश्मकश और जंगों जगत के जमाने में तो इतनी तबाहियों में नहीं आती कौम। उस वक्त तो अंदर एक जोश होता है, एक हरारत होती है, मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए एक शौक होता है, वो सरगर्मिया मन रखता है कौम को। लेकिन मंजिल पर पहुंच जाने के बाद जब वो अपने अनासर में इस मैदान पैदा कर लेती है, वह कौन तबाह होती है, वह सब फिर हो। अब ज्यादा सामान्य हिफाजत का नुकसान अपने लिए मंजिल ये वो आ गई है। इन्ना ही काना तब बाबा की देखेगा कि अगर अब इस प्रोग्राम में ये हिस्सा तुमने शामिल कर लिया तो कादरी में खुदाबंदी पहले से भी ज्यादा तेजी और हरकत के साथ तुम्हारी तरफ लौट के आएगा। ये है तरीका इसका। नसर पे खुदाबंदी कवानी में फितरत और कवानी में समाजी का नाम है, जिनको अखबार कहा जाता है। उसके साथ इंसानी जिद्दोजहद जो है उसको हम आहंग कीजिए ताकि फसलदार आगर हो। ये महसूस नतज जो निजाम के हैं इनकी वजह से इतनी कशिश पैदा तुमने हो जाएगी कि लोग फौजदार फौज अंदर आएंगे। जब ये अंदर आ गए तो ये न समझो कि हमारा काम खत्म हो गया, प्रोग्राम की तकमील हो गई, अब तो तुम्हारा काम शुरू हुआ है। अब इन्हें संभालने के लिए, इनकी तालीम और तरबियत के लिए, इस नए निजाम को ज्यादा मुस्तहकम करने के लिए पहले से भी ज्यादा मसरूफ है, जिद्दोजहद हो जाए और सामान हिफाजत तलब करते रहो। ये कुछ करते रहोगे तो कानून खुदाबंदी पहले से भी ज्यादा तेज गाम होकर तुम्हारी तरफ बढ़कर चला आएगा। इन्नहु काना तवाबा। देखा जीवन मन, फतह नुसरत के बाद, कामयाबियों कामरानियों के बाद इस इनकलाबी जवाब के लिए क्या प्रोग्राम आ रहा है। ये पहले दी गई वार्निंग, और इस वार्निंग के बाद कहा कि लो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन, तब मामला खत्म हुआ। वो टूटे हाथ इनके जो मुखालफतों में इस कदर आगे बढ़ जाएंगे। किस तरह से हसीन लफ्ज है इसके अंदर अभी जाने का, टूट गए हाथ, आखिरी शिकस्त मिल गई, खत्म हो गया इन्हिजाम, हो गया इन सब का। इसमें अभी लहब कहा गया, कुरान करीम ने मुखालफीन में से सिर्फ एक का नाम लिया है, नाम भी नहीं लिया, कुलियत से ही इसको पुकारा है, और वो है अभी लहब। सवाल पैदा होता है कि इन शब्दों से क्यों से इसका क्यों नाम लिया, या किसको क्यों पुकारा इस तरह से। बड़ी अजीब चीज है, और यहीं से ये बात नजर आती है कि निजाम खुदाबंदी की सबसे बड़ी मुखालफत किसकी तरफ से हुआ करती है। अभी लहब की नीयत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा अब्दुल अज़ा इसका नाम था। लहब कहते हैं شعلہ خیز آگ مزاج میں بڑا اشتعال ہے. اور ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کون سا گروہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں اس کا اشتعال ہوتا ہے کہ ایک بات بھی اگر ان کے کسی نظریے عقیدے کے خلاف کہیے تو آپ دیکھیے کس طرح سے جھاگ آ جاتی ہے, ہمیں برداشت نہیں کر سکتے, ٹالرنس ختم نہیں ہوتی. مجھے تو آپ بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہے. شولا نگار گھر دکھنے والا تمہیں نہیں, دوسرے لاٹھ لیے ہوئے ہر وقت پھر رہے ہیں. سر کیا تھا یہ ابھی لاٹ؟ ابھی تو میں نے صرف یہی کہا ہے, قریب قریب حضور کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا, اس کے بعد یہ چاہتا ہی قریب قریب ہوتے ہیں. قریب قریب قرابت دار پہلی بات کے لیے کر دی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نہیں. نوح کا بیٹا اگر ساتھ نہیں ہے تو وہ سال میں غرق ہو جاتا ہے. لوط کی بیوی ساتھ نہیں ہے, اگر لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہیں ہے تو وہ پیچھے رہ جانے والے نہیں ہوتے. ابراہیم کا باپ ساتھ نہیں دیتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور محمد کا حقیقی چچا سب سے زیادہ مخالف ہے, اور سب سے پہلے اسی کے متعلق کہا گیا ہے کہ ختم ہو گیا وہ. یہاں قرابت اور رشتے داری کچھ مانے نہیں دیتی, سواری کچھ پیدا نہیں ہوتی. قریب ترین رشتہ دار جو تھا اس کی بات کری. اب اس کی کیفیت یہ تھی سب سے زیادہ مخالف. پہلی دعوت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفات کھڑے ہو کر آواز دی تھی مکے والوں کو اور ان کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں تمہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پہ تھے یہ نیچے آئے پہلی سن پاٹا ہوں. کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی تو تم اسے مانو گے؟ انہوں نے مجاز زبان کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے, تم نے کبھی آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں. بھائی انقلاب کی پہلی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے. ابھی جانے والا ہمیں اعتماد ہے تم. اور اس میں دوسری بات یہ تھی کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے, یہ اس دامن کوہ میں کھڑے تھے. وہ ایسی پوزیشن میں تھے کہ جہاں سے وہ پہاڑ کی دوسری سمت بھی دیکھ سکتے تھے, ادھر بھی دیکھ سکتے تھے. یہ صرف اسی طرف دیکھ سکتے تھے, ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے. نبی کے معنی ہوتے ہیں مقام بلند پہ کھڑا ہوا. وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے, وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے. اس لیے اس کی بات جو ہے صداقت سے مبنی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو ہمیں ان انسانوں کے سامنے نہیں آئی ہوتی. جب وہ ان تک پہنچا دیتا ہے تو پھر یہ دونوں یکساں ہو جاتے ہیں. اس سے پیشتر نبی کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ بلند مقام سے ہوتا ہے. بہرحال آپ نے یہ کہہ کے ان کو کہا کہ ایک بہت بڑی آفت تم پر آنے والی ہے جو تباہ کر دے گی, تو سب سے پہلے اسی چچا ابو لہب نے یہ کہا, اسی نے یہ کہا تھا کہ سب بننا تھا اور تیرا سچے اناس معاذ اللہ معاذ اللہ. تو نے یہ کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا اور آپ نے پہلے بتا لے کے چلا گیا. اس کے بعد سب سے زیادہ سخت مخالفت اس کی طرف سے ہوتی تھی. یہ کیوں ہوتی تھی؟ قریش تاجر تھے, وہ تو عام طور پہ تجارت میں لگے رہتے تھے. یہ کعبے کا متولی تھا, یہاں مذہبی پیشوائیت تھی. اسے یہ پتا تھا कि ये निजाम, ये आवाज जिसे ये लेकर उठा है, सबसे पहले इसकी जिद आकर मजहबी पेशवाइये के ऊपर पड़नी है। वो समझ गया था कि जब ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो इसके माने क्या है। अजीजान मन, वो लोग जानते थे कि ये किस कदर अजीम इनकलाब की दावत है जो दी जा रही है। वही उसने कहा था कि ला इलाहा, इसे मालूम था। अब ये सारे इलाह जिनके नुमाइंदे बनकर हम दुनिया को एक्सप्लॉयट करते हैं, वो सब खत्म करके रख देगा ये सब। और जब वही ना रहे तो फिर हम कहाँ रहेंगे। इससे बराह रास्त जद पड़ती थी इस चीज की, काले की तौलियत छिन रही थी, इसकी पेशवाइयत खत्म हो रही थी। और ये वजह थी कि इन सब में सबसे ज्यादा ये शख्स जो मुखालफत करता था। और यही चीज है अजीजा नमान, अब 7 साल के अरसे में कुरान करीम में जितने अंबिया सबका अलैहिस्सलाम की दास्तानें हमारे सामने आई है, इसमें आप देखेंगे अंबिया कराम की इंकलाबी दावत की मुखालफत हमेशा मजहबी पेशवाइयत की तरफ से हुई। निजामे सरमायादारी उनकी पुष्ट में होता था, लेकिन बफर यही होते थे दरमियान, मुखालफत यही करते थे, माफिल को मुश्किल यही कर सकते हैं। कुरान करीम ने ये एक इंतखाब करके अबू लहब का ये बता दिया यहां भी कि सबसे बड़ी मुखालफत किसकी तरफ से हो रही थी, कौन सी वो जमात थी जिसका ये नुमाइंदा था कि जिसकी कुव्वत के टूटने से निजाम कायम हो सकता है। जब तक ये कुव्वत नहीं टूटती है जीजा ने मन, सही निजाम खुदाबंदी कभी कायम नहीं हो सकता। निजाम खुदाबंदी के रास्ते में सबसे बड़ा संगे गिरा, सबसे बड़ी रोक मजहबी पेशवाइयत होती है, याद रखिए। ये बड़ी आसानी से फरेब दे सकती है। ये अपने हैं इस्तलाहात वगैरह वही इस्तेमाल करती है जो निजाम खुदाबंदी की गिनती होती है, उनके मानी और उनके तस्वरात को खत्म किया गया होता है इन्होंने। तो ये बहुत बड़ा फरेब है जो ये आवाम को दे देते हैं। ये सबसे बड़ी रोक होती है निजाम खुदाबंदी की तस्वीर में, इसलिए ये खास तौर पर चुन के इसका नाम लिया कि इसकी शिकस्त दर हकीकत निजाम की फतेह है। और फिर कैफियत यह थी जाति करेक्टर की, और वो भी इसी की बात नहीं है, हर जगह ये हो रहा है। काबे का मुतवली था, काबे में जो चढ़ावा चढ़ता था उसमें जितनी कोई कीमती चीज आया करती थी, ये एक ही मुतवली नहीं था बल्कि ये पूरे के पूरे मुतवली थे, और ये उन मुतवलियों का हेड था। इसकी कैफियत ये थी, एक दफा सोने का हिरन चढ़ावा चढ़ा, चोरी करके ले गया, ये भी तो नई बात नहीं है। रोल होता है, अभी परसों अखबार में निकला हुआ था, ये कह रहे थे कि महकमा अवकाश ने जितनी जायदादें अपनी तहवील में ली है उससे कहीं ज्यादा जायदादें ऐसी हैं जो अभी तक छुपी हुई है, जो लोग उसके मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे उनको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। चुरा कर रखा होता है ऐसा। फिर दू हिम्मती, बेगैरती, बुजदिली और बेहमियत की ये कैफियत थी। और हर वो शख्स जो मेहनत करके नहीं कमाता है वो बेहमियत और बुजदिल होता है। अरब जिनकी शुजात और गैरत की ये कैफियत हुआ करती थी कि एक छोटी सी चीज के ऊपर 100 साल तक वो जंग लड़ा करते थे। मरने वाला बाप बेटों को वसीयत कर जाता था कि फलां से बदला तुमने देना है। इस मामले में अरब जाहिलियत का कैरेक्टर ये था इसकी कैफियत ये थी कि बदर की जंग में जब कुरैश के तमाम सौ बाहर गए हैं खुद लड़ने के लिए, ये उस जंग में नहीं गया। तुम्हें चलो माई साहब चलो अभी तो रूट लेने वाले आ गए। पिछली जंग में आपके यहाँ जो एलियन से कहा गया था कि सरकार जरा फ्रंट पे भी जाइए, कहने लगे नहीं ऐसी रिक्रूटिंग अफसर भूलने आएंगे, खुद नहीं किया उस जंग में। और उसके बाद सुनिए अजीजा ने मन, ये हमियती नहीं, किस कदर दरिंदगी थी। एक शख्स ने इसका कर्जा देना था तो आपको तो मालूम है ना कि ये कर्जे पे भी रुपया चढ़ाते हैं, उसके गले पे इसने अंगूठा रख दिया कि लाओ रुपया। उसके पास नहीं था तो इसने कहा कि जाओ फिर मेरी तरफ से जंगे बदर में जाके लगो, उसको मरने के लिए भेज दिया। आप देख रहे हैं कि एक लक्ष्य से एक की तरफ से इशारा करके कुरान क्या क्या चीजें सामने ला रहा है। लेकिन हुआ यह कि उस जंगे बदर के चंद ही दिनों के बाद ये खुद एक इंफेक्टिव डिजीज के अंदर, एक मुकदी मर्ज के अंदर मुबला हुआ और ये मर गया। अपने बेटों अपने भाइयों के साथ सलूक की यह कैसी थी कि वो इसको दफनाने के लिए नहीं लेके गए, चंद हसी मजदूर उन्होंने किराए पे लिए और वो इसको उठा के खड़े में फेंका। ये जितने होते हैं आप देखिएगा इनकी औलाद इनके हाथों बड़ी माना होती। ये तमाम चीजें पुराने करीम में एक लफ्ज के अंदर एक शख्स की तरफ इशारा करके चिमटा के रख दी और कहा कर लीजिए खत्म हुआ मामला इनका। जिस बल बेटे के ऊपर ये सारा कुछ इन्होंने कर रखा था अब वो ढह रहा है सामने से। मजबी पेशवाइयत का नुमाइंदा खत्म हो गया, यानी ये चीज रास्ते से हट गई, अब ये खत्म हो गई, ये चीज बाकी नहीं रही। माँ अगना अन हो मालो ही व माँ कसम, बड़ा माल जमा कर रखा था उसके भरोसे पे ये कुछ करता था, बहुत कुछ कमाई कर रखी थी, ये और किस्म की कमाइयां भी इसके अंदर शामिल। जब ये तबाही का वक्त आया तो उनमें से कोई चीज भी इसको इससे बचा न सकी। अजीजा ने मान जितने भी इंकलाब आप देखिएगा ये मारे गाँव इनके हैं कि ये जीतने लगे कि संदाई ये मनसूब और जांच कभी किसी को बचा नहीं सकते। इस रेल ये चीजें उसको बचा न सकी। फलसला नारम दाता लख गए खुद वो अभी लहत था, कहा देखोगे तुम कि अभी ये किस कदर थोड़ा फेज आज की नजर हो जाता है। फिर ये अकेला ये नहीं करता, कुरान ने इसके साथ उसकी बीवी के मुकदमे भी कहा राम रात ही, ये उसकी बराबर की साथी थी इसके साथ, वे भी ये कुछ किया करती थी और उसके लिए कहा है हम माल आता इस खतर, आम तर्जुमा जो है सोनमन को अपनी कमर से लाद के लाने हैं। पुराने करीम में जहां जनों पर जन को बीवी बच्चों को वजह जीवित करार दिया है, वही ये भी चीज कहिए तो याद रखो सबसे बड़ा कितना तुम्हारी जिंदगी में ये भी हो सकते और दुर्गुण में तुम भी कहा है। और ये तो हमने से किसका तजुर्बा नहीं, कि अपनी जात तक तो इंसान हजार किस्म की टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर लेता है। ये बीवी बच्चे जो है ये जब आते हैं तो आप देखिएगा कितनी बड़ी खराबी है, इंसान उनकी खातिर करने के लिए आवादा हो जाता है। ये वो फिसलने की घाटी है जहाँ बड़े बड़े उलूल अजम भी आकर फिसल जाते हैं। औलाद और बीवी बच्चों की घाटी उसके बराबर का दिल किया है इसमें। अब ये जो एंटन उठा के लाने वाली है ये क्या चीज, यही पहले आ चुकी है लेकिन आखिरी चीज को लो तो मुझे सब कुछ दोहराना होगा। जैसे कुरान पहली तमाम चीजों को दोहराया चला जा रहा है तो याद होगा कि मैंने ये बताया था कि नाना इकबाल ने अपनी एक नज़्म लिखी है, बड़ी अजीब चीज है। कुरान के जहन्नम का सही तसव्वुर इसमें दे दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं आसमान को गया, वहां मैंने सब कुछ देखा, मनक मनक की विचार की, वापसी के ख्याल आया कि वो एक जहन्नम भी होता है, उसे भी मेरे घाट का चले। तो वो जो गाइड था उससे कहा कि भाई मुझे जरा जहन्नम भी दिखा दो, वो ले गया। वहां जाके देखा कि एक बहुत बड़ा दरा है और वो इतना ठंडा है कि फिसल रहे हैं। मैंने उससे कहा कि हमने तो सुना था कि इसमें बढ़ती है आग और ये इतना ठंडा है कि वो आग कौन सी है। तो उसने कहा कि इसमें तो आग नहीं होती, हार आने वाला अपने अंदर खुद लाद के लाता। जहन्नम की आग का इंजन तो हम खुद अपनी किस्त के लाद के ले जाते हैं। हम माना चाहिए अतः जहन्नम के इंजन को अपनी चीज से उठा के फिरने वाले जीते हैं। हर लोग ये नशक बड़ी खूबसूरत चीज है, अरबी जुबान में उनक भी कहती है गर्दन को, लेकिन जो गर्दन सरफराजी की हो ये अगर पे चलने वाली हो, जिस गर्दन वाले को बड़ा नाज हो अपने सर को मजा दो इज्जत और सरफराजी कर, उसकी गर्दन को जीत कहा जाता है। कहा कि ये बड़ी सरफो इज्जत की हामिल गर्दन ये असर के उठा के चलने वाली उसमें अदलम मिल नशक पंजाबी की जिन मूलगी रखी थे मेरे में। आप देखते हैं कि उसमें गिलत का पहले कितना है, फिलहाल गुलामी की जंजीर से उसमें गिलत का पहले भी है। तो वहां वो नूर के खजूर के पत्थर की रस्सी ऐसे जैसे नूर की रस्सी बटी हुई होती है, आज ये इतनी बड़ी गर्दन जो आज किसी के सामने झुकती नहीं, बड़ी सरफराजियों की उठी हुई है, इसकी तस्वीर ये होगी जो जलील तरीन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए जो है। इनाम कर दिया जो लीजिए वो मामला खत्म हुआ, इनकी कुवत टूट गई, इनको आखिरी शिकस्त मिल गई। आप देख रहे हैं इस कश्मकश का अब जो जाहरी दाम हमारे सामने आता है उसमें किस हत्म यकीन से कहा जा रहा है कि इनको अब आखिरी हजीमत हो गई, अब ये सामने तुम्हारे आ नहीं सकते और इसके बाद आगे आप आ रहे हैं बराबर आने अजीब तीन आखिरी शीर्षें जिसमें ये समझिए कि कुरान ने सारा कुछ हमने उन्हेल के रख दिया। ये इतनी लंबी कसमकश, उसके बाद ये इतने शानदार मदाए, इतनी बड़ी सबूतों की शिकत, इतनी कमजोर और बेमाया की जमात की इतनी बड़ी कामयाबी हुई किस तरह। इसकी पहले राज क्या था, इसकी उन्नत उमंग क्या था। हमारी निगाहें तो आम अखबार और इलम की तरफ जाएंगी, यूरोप के मुसलमान उनको भी देखिए कि जब वो इस मकान पे आते हैं उन्हें जो जलाते हैं, फिर सूर्य संसदन ने पोलिटिकल नक्शा इस किस्म का बनाया, स्ट्रेटेजी वॉर की इस किस्म की रखी, वो तमाम चीजें जो जलाते हैं जिससे ये सब कुछ हुआ। कुरान यहां पहुंचने के बाद निगाहों का रुख हकीकत की तरफ फेर देता है। वो कहता है कि ये ठीक है, इन अखबार इलम की जरूरत है, दुनिया आने में अखबार है, इनमें ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन यही चीजें काफी नहीं है, इसके लिए बुनियाद एक और है। उस बुनियाद के ऊपर अगर ये तमाम अखबार इलम और ये कोशिशें उठेंगी, फिर इस किस्म के नतज पैदा होंगे। अगर वो बुनियाद बातिल है, कमजोर है, तो ये अखबार इलम वक्ती तौर से तो कुछ कामयाबियां दे सकते हैं, लेकिन वो इस किस्म का नक्शा मुरतब नहीं कर सकते जैसा नक्शा ये निदान अब मुरतब करेगा। ये बुनियाद कौन सी है अजीजान मन? जब मैं ये बात कहूंगा तो जहन में आएगी मेरी जल्दी से बात, लेकिन हकीकत वही है। ये सारी चीज, ये सारा नुकता है मासिका, ये बुनियाद अजबल मिलन उदासदार की नाम। इसलिए कहा है कि बात समझ में नहीं आएगी कि हमने से कौन है जिसका दावा नहीं है कि खुदा पर स्थल है। 70 करोड़ मुसलमान काम स्थल दुनिया के खुदा पर के लिए भी मान रखते हैं, और उसके अलावा दुनिया में चंद दायरों को छोड़कर सारी दुनिया ही खुदा पर मान रखती है। तो ये बात फिर क्या हुई? खुदा पर ईमान ही एक ऐसी चीज है जिसको सही तौर पर समझ लिया जाए तो फिर इस्लाम समझ में आ जाता है, और इसी से मजहब का तस्वीर भी निकल कर सामने आ जाता है, और वहीं से ये भी पता चल जाता है कि दोनों अलग अलग किस तरह से ये हो जाए। असल चीज खुदा पर ईमान नहीं है, असल चीज खुदा का तस्वीर है। कौन सच है उसके मुतल, वो है क्या, वो किस किस्म का खुदा है जिसे हम मानते हैं? और अगर कोई पूछे अजीजा ने मन कि कुरान की तालीम का नुकता है मासिका क्या है, कहा जाएगा कि खुदा का सही तसव्वुर दी जाएगी। मगर में खुदा का नाम होता है तसव्वुर सारा बदल दिया जाता है। कुरान इसलिए नहीं कहता कि खुदा को मानो, ये इन सब ईमान वालों से ये जो खुदा को मानने वाले हैं, हत्ता के जो अहले किताब जो किताबों को भी मानते थे, रसूलों को भी मानते थे, इनसे मुताल्लिक कुरान ने ये कहा कि इन आमनु जिसने ला आमन तुम नहीं सकते कदम, अगर ये खुदा पर इस तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाते हो तो फिर उनको ईमान रखा जाएगा, फिर मेरा है बात चीज होंगे। ये मैं किसी का कह देना कि मैं अपराधों मानता हूँ, ये कोई बात ही नहीं। सवाल ये है कि तुम किस किस्म के खुदा को मानते हो? एक खुदा मगर से किस्म बन रहा है जिसके यहाँ ना कोई कायदा, ना कोई कानून, ना कोई आईन, ना कोई दस्तूर। अल्लाह बेहतर हुआ है बल्कि लाभर हुआ है। हाँ, जो जी जाए करता, जो जी आए कहता, हम कुछ कहता कभी ना कुछ कर देता, लेकिन मैं कहा करता हूँ ना जलता तो वो आशा एक नाराज मुस्लिम बना के रख दिया है। इसे बासी ले दो, इसे गाँव बासी दो, ये शादी में क्या हुआ मिजाज साहबी का सीरत ये है कि कभी तो कोई गाड़ी दे दे उसको तो खरीद रख देते हैं, कभी उसको कोई सलाम करे फांसी को चढ़ा देते हैं। मिजाज साहब नहीं हुआ था, बात क्या तो ये तो सोचे पहले तो मदद में ये कहा था कि अब सुल्तान और जुल्मन में आलम हर कि बादशाह जमीन पर खुदा का साया होता है। हकीकत में उन्होंने खुदा को इस जमीन के बादशाह का साया बना के रख दिया गया। जिस किस्म का इनके यहाँ बादशाह था इन्होंने उस किस्म का खुदा बना दिया। जरा मैग्नीफाई कर हिंदुओं के यहाँ रावण के दस से बनाया करते हैं, के साथ भी उसने कहा के साथ इसका जब कद लगे खुद का था तो फिर भी तो दास का मतलब होने चाहिए। काली के चार हाथ होते हैं तो साहब इसने तो कतलेआम करना है, एक हाथ से तो कतलेआम इतना हो नहीं सकता, चार हाथ होते हैं ना। ये क्या चीज है इंसानी जीवन में इस दुनिया के अंदर इंसान जिस किस्म के देखे जब उस किस्म का खुदा बनाने का उसको उनसे बड़ा बड़ा बना के दिखा दिया। मगर कर्तव्य ये है जिसके सामने इंसान होता है उस इंसान इंसान से जरा मैग्नीफाई करते हैं, बहुत बड़ा सा बना देते हैं। तीन पर तख्ते हकीमत पे जो बैठा हुआ जहाड़ी तख्त पे बैठा हुआ होता है उसके इर्द गिर्द अमीर वजीर नसीर सारे के सारे बैठे हुए हैं। बाहर दूर तक हाजिद और दरबार है, कई उस तक बड़ा रात पहुंचने तक वसीले ढूंढने पड़ते हैं वहां तक आने के लिए। फिर ये जो उसके करीबी होते हैं मुकर्रदीन जिनको वो कहते हैं उसकी सिफारिशें बनवानी पड़ती, ये उनकी अर्जियां जाके पेश करते हैं, इन्हें निगराना देना पड़ता है, उसके हजूर में कसीदे गुजारने पड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि बयान ही लगता जिसका यहाँ एक मुफ्त संसाइयत का था, ये तो तस्वीर था जो खुदा का दे दिया। उस तस्वीर के माता है कि इंसान की कैफियत जैसे देखकर मुख्तलिफ के साथ में रहा भी कैफियत होती है। हर वक्त डर से काम से आम से जो बात है पहले देखिए कि वो मिजाज की वो क्या चाहते हैं। अगर क्या रोजना वेद डर अच्छी जो बाहर गुप्त हिम्मत बाहर डर भी शादी करता है। अगर बादशाह जिनको कह रहे रात है तो सही सरकार देखिए चांद निकला हुआ है, सितारे का निकला हुआ है, सुभान अल्लाह। ये है जो खुदा जिसको मानने से अहले मजहब लोगों के खुदा फर्क कर रहा है। कितनी दूर चला गया इंसान और कितना जमीन तरीन मकान खुद इंसान का रह गया उस खुदा के मामले में, और सिर्फ दीन का खुदा है जिसकी अपनी की कैफियत ये है। वो कहता ये है कि ये ठीक है कि हमारी बड़ी कुत है उस कीमत के लिए उस कीमत के इजहार के लिए हमने कुछ कवानीन मुरक्कब कर दिए। ये सारी कायनात उन कवानीन के ताबे चलती है और हम काबरे मुतलिक होने के बावजूद हमने अपने आप पर इतनी पाबंदी कर दी है कि अब हम भी उनके कानून के खिलाफ कभी नहीं करते। इसके मुकाबले में इंसान वो तो मजबूर है, खुद अपने ऊपर ये मजबूरी की एक कैद डालते कि हम इसके खिलाफ नहीं करते, और इंसान की कैफियत ये समान साल जीवन समान साल जयपुर उनमें से जिसका जी चाहे उसके अख्तियार करे, जिसका जी चाहे उसके खिलाफ वर्जी करे। किसी अख्तियार दिया हुआ है इसकी खिलाफ वर्जी करने का भी, अपने ऊपर इतनी बड़ी पाबंदी आज की हुई है कि हम इसके खिलाफ नहीं करें। देख रहे हैं तो बात क्या है, किस कदर अमन होता है उस माशरे के अंदर जहाँ हर शब्द को ये मालूम हो कि जहाँ हर बात कानून के मुताबिक हो, न किसी की सिफारिश चलेगी, न यहाँ रिश्वत चलेगी, न नगराने होंगे, न कफायत से आज उसका दिल बोल सकेंगे, सवाल ही नहीं होता। हर छह कायदियां कानून के मुताबिक होती चली जाए, सुधार का ये फिर अपराधी की नहीं अफवान का अरूज जवाल और मौत जिंदगी भी इन्हीं कवानीन के साथ न बचता। जो कौन इनके मुताबिक ये कुछ करेगी सर विलंबी हासिल करने, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगी इसको जवाल और जाएगा। दुनिया की कोई ताकत किसी ने ऐसी कौन को बचा नहीं सकती कटाई से जो इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करे। खुदा का कसम और आगे बढ़ी, खुदा और इंसान का कसम, इंसान के हवालात ही की एक बड़ी ही कसम है। जिसकी जिसमानी जिंदगी देखती है तो ये बिल्कुल हवालात ही की तरह है, इसी किस्म की मशीनरी, यही कभी कवानीन किसी के मुताबिक भी चलता है। एक फर्क है ना जो कुरान ने बताया कि इंसान को उसकी एक पर्सनैलिटी एक जात दी गई है, हवालात में ये चीज नहीं है। यही वो शह है कि जिससे ये शायद अख्तियार इरादा बनता है, यही सर से इंसानियत है। अब इंसानी जात की कुछ बुनियादी खसूसियात होती है, जिन्हें कुरान ने किस तरह से बयान किया, कहा यह कि खुदा की भी एक जात, जात खुदाबंदी हम कहते हैं, खुदा की जात। जैसा मैंने कहा है कि जात में पर्सनैलिटी के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या बुनियादी खसूसियात होती है। कुरान कहता है कि जात जहां भी होगी उसकी वही खसूसियात होगी। खुदा के मुताबिक सिर्फ ये है कि वो मुकम्मल तरीन जात है, इसलिए उसमें वो खसूसियात अपनी इंतहा तक पहुंची हुई है। इंसान को जो वो जात दी गई है तो हदूद बशरियत के अंदर वो खसूसियात खुद इंसान के अंदर मौजूद है। ये तो एक छोटे से यूनिवर्सल फॉर्म में छोटे से पैमाने के ऊपर खुदा है इस कायनात में। कुरान में जिन चीजों को सिफात खुदाबंदी कहा गया है वो जात की सिफात है। खुदा के अंदर परफेक्शन से पहुंची हुई तस्वीर तक पहुंची हुई, इंसान के अंदर हद बशरियत के अंदर मौजूद, लेकिन यही खसूसिया कुरान करीम में किस सूरह इखलास में खुदा की जात की बुनियादी खसूसियात तीन में चार जलाई। एक तो ये कि खुदा का तसव्वुर से ही आ जाए, दूसरे ये इंसान को खुद मालूम हो जाए कि मेरी जात कुछ वक्त मसूल वाजा समझी जाएगी जब मेरे अंदर भी ये खसूसियात पैदा हो जाएगी। और पहली खसूसियत है قل هو الله احد. ہمارے یہاں جو ترجمہ اس کا یہی کیا جاتا تھا کل اشہد اللہ ایک ہے, بات ایک سے نہیں ہوتی. عربی زبان میں واحد کے لیے بھی ایک آتا ہے, یہ احد ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. سینکڑوں انسانوں میں سے ایک انسان آپ کے سامنے آئے تو واحد ہو جاتا ہے. ایک انسان آیا, ان دادادیوں میں سے ایک آیا ہمارے سامنے, لیکن احدیت کے معنی ایک ہونا نہیں ہوتا. انگریزی زبان میں جس کو یونیک کہتے ہیں, عام طور سے اسے جگانا کہتے ہیں ہمارے گھر, لیکن یونیک ایک اور چیز. یونیک وہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جو کچھ ہوا ہے کوئی اور ویسا نہ ہو, اس کی انفرادیت اس کے اندر ہوتی ہے, انڈیویجویلٹی اس کی اس کے اندر ہوتی ہے. یہ کہا کہ وہ یونیک ہے, یگانہ ہے, انفرادیت کی بات یہ سمجھ میں آ سکتی ہے. ہر انسان جس نے اپنی آپ کو وہ مائن کرتا ہے, اس کی مائن اور جگانا ہوتی ہے. میرے احساسات, میرے اندر کی کیفیات کسی دوسرے کی نہیں ہوتی. کوئی دوسرا ان کو ڈانٹ نہیں سکتا, کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ میرا درد میرا درد ہوتا ہے, کوئی دوسرا اس کو محسوس نہیں کر سکتا. ہمدردی تو اس کو کر سکتا ہے. میرے تاثرات میرے ہوتے ہیں, اسے انفرادیت کہا جاتا ہے, انڈیویجویلٹی کہا جاتا ہے. اور یہی انڈیویجویلٹی ہے کہ جس سے یہ سارا قانون مقاصد عمل کس کے اوپر چلتا ہے. میرے ہر عمل کا نتیجہ مجھے بھگتنا ہے, کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا. جسے کہتے ہیں یونیک ہونا, انڈیویجل ہونا, انفرادیت لیے ہوئے ہونا. خدا کی یہ تکلیف ہے کہ وہ انفرادیت لیے ہوئے ہے, یونیک ہے, کوئی کیا کرتا. یہ تو افراد کی انفرادیت ہے. اور جب کوئی قوم خدا کی اس صفت کو اپنے اندر مناسب کر لے تو وہ خود دنیا کے اندر ایک یونیک قوم ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے برادران علی, جس طرح سے ایک مرد مومن انسانوں کے اندر یونیک ہوتا ہے, مومنین پر مختلف جماعت میں ہوتی ہے, وہ اقوام کے اندر یونیک ہوتی ہے. تاریخ میں بڑی بڑی بلند تہذیبیں بھی آپ کو نظر آئیں گی, بڑی بڑی وسیع سلطنتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی, لیکن ہم سے نہیں غیر مسلموں کے پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقا کی جو جماعت پیدا ہوئی تھی, غیر مسلم ہسٹورین بھی جب وہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یہ ہے کل ہو اللہ ہو احد ماننے والوں کی, ماننے والی جماعت کی خصوصیت. اس جیسی جماعت مل ہے تو کل تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. کل ہو اللہ ہو احد, اللہ اس سمجھ ذات کی دوسری بنیادی خصوصیت انبیت ہے. یہ ہے وہ سمجھ جس کا ترجمہ میں بے بنیا کیا جاتا ہے. بے نیاز سمجھیت ایک ایسی محکم کتاب جو اپنی حفاظت کے لیے کسی کی محتاج نہ ہو, لیکن जब चारों तरफ से सैलाब आ जाए तो हर शख्स उसके ऊपर जाकर महसूस हो जाए, उसको समझ लेते हैं। खुद अपनी हिफाजत के लिए किसी की मोहताज है, अपने पांव पर जम से खड़ी हुई हवाजे के जमाना की निकलाकर लहरें आए सब टकरा कर पास पास होकर वापस चली जाए, इसका कुछ मैं निगार सके। और जब किसी को कहीं बनाना नहीं सके तो ये उसको बना देंगे। अजीज वाले मन, जब किसी फर्ज के अंदर खुदा की ये सबक लेना चाहते हो तो भी अगर सही कितनी बड़ी हुर्रियत और आजादी इसके अंदर आ जाए, अपने लिए किसी का मोहताज ना हो और हर मोहताज के लिए ये आसरा बन जाए। और जब दुनिया में कोई कौम इस किस्म की वजूद में आ जाए तो फिर हवाजे से जमाना से तलाशन में डूबने वाले इंसानों के लिए ये चटान जो कुछ करेगी आप समझ सकते हैं। अभी जाने वाले अल्लाह इसकी तस्वीर थी नम जगह जमन दिन दस बड़ी बुनियादी हकीकत इसके अंदर जाएगी। हवालात तक अफजाए से नस्ल का सिलसिला तौलीद के जरिए होता है। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन जैसे बेटा पैदा होता है या फिर जानवर के बच्चा पैदा होता है इसे तौलीद कहते हैं। रिप्रोडक्शन तो लाइफ की बेसिक इंस्टिंक्ट में से है, जिंदगी जहां भी है वो अपने जैसा पैदा करना चाहती है, इसी से ये कायनात का सिलसिला आगे बढ़ता है। इंसानी जिंदगी के अंदर भी नस्लें इंसानों की अफजाइश तौहीद के सिलसिले से होती है। बाप के बाद बेटा पैदा होता है, इसमें इंसान और हैवान मुख्तलिफ है। कई चीज के वजह करके इंसानियत नहीं है, लेकिन खुदाजे ने जब कहा यह गया कि वो न कोई सिलसिला तारीफ की तकलीफ है न उसके बाद जिसके साथ उसको कोई ताल्लुक होता है वो सिलसिला तारीफ का ताल्लुक होता है। इंसानी जात इस तरह से नहीं पैदा हुई जिस तरह इंसानी जिसम पैदा हुआ है। इंसानी जिसम सिलसिला तारीफ की वजह से पैदा हुआ है। जात या पर्सनैलिटी तबीब के साथ नहीं होती, अगर जाती तो हर हैवान हर हैवान के अंदर होती। ये खाने की भी खाने मिलता है, तबीब में ये चीज नहीं आती। इसीलिए कुरान ने इसको तबीब के सिलसिले को जिसमें इंसानी तक लाने के बाद फिर ये कहा कि नफाफा चीजें मिलती है ना, हमने अपनी तवानाई का एक सिम्मा इंसान को दे दिया, ये तबीब के जरिए से नहीं हो सकता था। ये बेनियाज हो गई तारीफ के सिलसिले। खुदा ने अपने आप को खालिक कहा, तकलीफ जो है वो क्रिएशन है, तारीफ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन हर हैरान कर सकता है, तकलीफ कोई हैरान नहीं कर सकता। ये खालिक है तो इंसान के लिए या इधर खुदा के लिए या नीचे इंसान, इसीलिए खुदा ने अपने आप को आसमिन खालिदीन कहा है। खालिद तुम भी हो, तुम्हें होना चाहिए। हमारी तकलीफ फसूल से नहीं होती है, तुम्हारी जरानी के दर्जे की होती है। इंसान और हैवान में अजीबा ने मन फर्क यहाँ शुरू होता है कि अगर ये भी अपनी जिंदगी का लक्ष्य तय ही रखता है, बच्चे पैदा किए, उनकी परवरिश की, ब्याह कर गए, सारी सवानी शुरू है, अगर तकलीफ नहीं ये करता इंसान के दर्जे की उधर नहीं पहुँचता। हर के इंदा किस्मते तकलीफ में जिंदगी में ये सब इस कायनात का हुक्म समर्पण ही क्रिएशन से है। क्रिएटिव फैकल्टी, क्रिएटिव आर्ट, नियम कानून कसर बंदियों ये हमारे तहरीक का सिलसिला ठीक है। गाय से नस्ले इंसानियों के लिए सिर्फ ये जरूरी है, वजह करते इंसानियत नहीं है, करते इंसानियत तो ये है कि तुमने क्रिएट क्या किया, सोचिए देखो ही जो काम तकलीफ के बंदरों में जटी हुई चली आ रही है, किसने तकलीफ का तसद्दुर पैदा नहीं होता, तकलीफ को नई चीज पैदा करने के लिए इस काम के अंदर इनोवेशन हराम करार दी जाए, जिस काम में हर खतरे के अंदर ऐलान किया जाए तुमने बेटा तुम बना दें, हर नई चीज गुमराही इसमें तकलीफ का क्या था, तकलीफ हवालात में होती है, जिस किस्म की बकरी पहले बनती आज उसी किस्म की बकरी पैदा होगी, हर बकरी अपनी माँ या बाप की तरह होती है, मुकम्मल होती है, जो घास जाती है गिरी घास जाती चंद्रवाने अगर भी गिरी कर, लेकिन जहाँ तकलीफ होती है वहां तो हर आम इसको एक काले लादर आते हैं हजूर में, और यही वजह है इस बार में बात तो गरज दस्ते तो सारे नादिर आए, गुना है हम अगर बासे सवा कर, कोई तकलीफी कारनामा जिंदगी के अंदर डर गया मुला की जिंदगी से अगर उसको गुना भी कहती है तो मत बदला सवाद है जी। उसके बाद अजीजान मन मन जगत बनाई बात खुदा का हमारे साथ ताल्लुक तकलीफी ताल्लुक नहीं है, हमारे ताल्लुक जितने सारे तकलीफ के साथ जुड़े हुए होते जाता इससे उठे हो जाए, अपने बच्चे को तो बकरी भी पालती हिंदू अगर इसी बारे में जुड़े रहे तो ये मेरा बेटा उदासी की से सुनने नहीं आई आवामी की बताई, हमारे सारे काम में सब तरीक से होते इससे आगे हम जाते ही नहीं, और आगे बढ़े तो पुराने शरीर में ये जो रेस का तस्वर नस्ल का तस्वर है इंसानों के अंदर इसको काट के रख दिया, नस्ल का तस्वर खाली तरीक के ऊपर होता है, एक नस्ल का एक रेस का हो रहा है, कभी है नहीं ये कैसा इससे रुके हो गए, दुनिया की कौनियों तो जो बनती थी रेस और कबीले और खानदान की बुनियाद पर बनती थी, तभी संख्य कहा गलत है, ईमान की बुनियाद के ऊपर एक नई काम बना है, ये तकनीकी चीज है आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर काम बना है, इसलिए कि खुदा का तुम्हारे साथ ताल्लुक तालीफ का नहीं है, तुम उसके बने हुए बेटे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रुबूबियत आलमी उसने अपने लिए रखी हुई है, तो कहता है तुम भी इस रुबूबियत के लिए हो, अपने ही बेटे को पालना तो हर हवाल कर लेता है, दुनिया के बेटे को अपने जैसा कल दिया बल से पालो, ये अखबार की सिर्फ कहता है, इतना कुछ कहेगा नाम नरेश प्रदान किया। वनम यकुल लहू सुख वन अहम समझे सुख सात से हजार किसी है में किसी के नजीर या निकट है मैं तो समझिए ही पैदान कोई भी तसल्य तुम अगर करो तो ये तो ठीक है खुदा की किसी सिफत तक करता हो तो वो हो सकता है लेकिन खुदा उससे बड़ा ऊंचा है नजीर नहीं उसकी होगी मशीन नहीं उसका होगा वो तो सारी कायनात में ऐसा हुआ इसके मानने वाला अब के मोमिन इसके अंदर भी ये खसूसियात होनी चाहिए कि जो खसूसियत इसलिए किसी दूसरा में नजर नहीं आती और फिर इन अफराद का मुश्किल जो कौम है इस कौम की कैफियत ये है कि बे नशीब मिसाल बे नशीब कौम दुनिया के अंदर में होनी चाहिए। कहा इनसे कहो कि ये है वो खुदा जिस पर तसव्वुर में हमें ये सारा कुछ हटा कर दिया जिसको तुम आज देख रहे हैं ईमान अजीजा ने मन यही चार कलमे के राजने का नाम नहीं ईमान नाम है कानून की मोहकमियत पर कन्विक्शन जब किसी कांतिक को यह कन्विक्शन हासिल हो जाए तो ये कानून ऐसा करेगा फिर उसके लिए वो जान देखो में डाल देता है कभी करते करते किसी मकान पर रिश्ता नहीं है जब तक के वो कामयाबी तक उसको नहीं बता देता जो चाहता है उसकी रुक नहीं जाए उसको यकीन हो और अगर ये यकीन ही ना हो उसको एक दफा नाकामी होती है तो जोड़ देता है तो नहीं साहब इसमें आई नहीं चला गया यकीन जब होता है कानून से नाकामी के बाद ये सोचता भी है कि ये मेरी किसी तकदीर में खामी रह गई थी जिसलिए ये नतीजा पैदा नहीं हुआ वरना कानून को नतीजा पैदा कर देना था इसे कहते हैं ईमान। इस किस्म के खुदा का ईमान ने कहा कि तुम से कह दो तो हमारी इन कामयाबियों और कामरानियों का राज ये है कि हम इस किस्म के खुदा से ही ईमान लाएंगे। हदीयत का खुदा तमहीयत का खुदा तालीफ के बुलंद वाला रब्बुल आलमीन वो बेरिस्क बेनजीर खुदा उसके मानने वाली कौम के अंदर जिस किस्म की खसूसियात को करते होना चाहिए तुम जो हमें ऐसा देख रहे हो तो इसलिए देख रहे हो कि हम उस आईने के अक्सर जो भी ये अपने अंदर बात पैदा करेगा उसकी यही तबीयत पैदा होगा कहा देखना खालिफ नाजी इस बात की ऊपर न कहीं आ जाए नाजी इस्लाम के लिबारेटरी में सारे मौजूद होते हैं अगर वो साइंटिस्ट के पास दायरे में होता है तो नाजी इस्लाम कुछ नहीं किया जाए कहा ये यकीन शामिल है जिसके जिसकी वजह से हमें ये सारा कुछ हासिल किया अब यहां पहुंचने के बाद उम्मत मुसलमान मुनफरद हो गई बाकी अगवान आलम से इनकी कामयाबियों कामरानियों की बुनियाद इस ईमान से शामिल भी की और खुदा का ये ईमान भी मुनफरद हो गया मजाहर की दुनिया से जहां खुदा का तसव्वुर कुछ और होता है यहां खुदा का तसव्वुर कुछ और किया गया अभी वाले मन फतह और नुसरत आ गई निजाम में तकसील हो गया मुखालफतों और अदालतों का खात्मा हो गया बुनियाद बता दी कि कौन सी तुम्हारे हाथ में थी ये सब कुछ होने के बाद एक और मरहला आ गया है जिस दिन डॉक्टर साहब ये बता देते हैं कि ले भाई अब बिल्कुल बीमारी चली गई तुम्हारी तुम्हें बिल्कुल सफा हो गई इसके बाद कुछ और भी साथ कहा करते कहा यह चाहते हैं कि याद रखो आइंदा तुमने ये चीजें नहीं खानी तुमने ये कुछ नहीं करना ये होती है ना आखिरी चीज अब ये दो आखिरी चीज से आ गई कि अब इस बीमार खाने के बीमार सफा जाने के बाद जा रहा है और इसे आखिरी वक्त में ये तजीजे निश्चित जा रहा है कि सुनो ये सब कुछ तुम्हें हासिल हो गया अब इसके बाद कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आगे ले रहे हैं तुमने विभाग की तदाबीर अख्तियार करनी है शासक ये निजाम टूट न जाए, शासन रहे, आगे बढ़े। आप देखते हैं अजिंदा निदान प्रोग्राम में आखिरी कड़ी का, ये आखिरी कड़ी का देना किस कदर तकलीफ को पहुंचा देता है प्रोग्राम से, यहाँ तक खत्म हो गई थी बात। कामयाबी हासिल हो चुकी थी, निजाम में तो खत्म हो गया था, इसकी बुनियाद बता दी गई थी, लेकिन मुरीरे समझी गई कि नहीं मोहताज रहना है इन चीजों से, ये भी बताया जाए। और कलाम के निकम्बल होने की जरूरी यह हो सकती है कि वे इस वक्त वक्ती सफा न दे आइंदा के लिए ऐतिहासिक तदाबीर भी बताए। तुम चित्र मारे हमारे तुम आयुगे गिरफ के आयुगे बड़ा अजीब लग गया अजीब वाले ये मुर्गी के नारा बच्चे इसके साथ के चुटके चुटके यूं कहीं तीन का छाया भी नहीं तो करे। आप देखते हैं कि ये भाग के किस तरह मुर्गी के नीचे आ जाते हैं, हर जानवर का नाम का इतना बच्चा जरा कहीं खतरे की आवाज आए भाग के लोगों के साथ में बच्चा इधर से नाव भी दौड़ के उसको अपने नीचे ले। नाव का ईटा बच्चे का इस तरह से खतरे के वक्त में अपनी माँ की आवेश में सिमट के आ जाना इसे आई है। यह कांग्रेस की चाहती कितनी बड़ी चीज है। तो याद रखो दुनिया में बड़ी बड़ी जमात है, तुम्हारे मुखालिफीन की पैदा होगी, तुमने ऐसा इंकलाब बरपा किया है जिसमें तुम बड़े बड़े सरमायादारों का मजबूत ग्राहियों का बड़ी बड़ी हुकूमतों का खात्मा करके रख दिया। तुम्हारे निजाम को जो पहुंचाने के लिए चारों तरफ से जुलूसें होंगी, क्या करना जब जुलूस है, जब कहीं खतरा नजर आया तो क्या करना। मजाइदा बच्चा जो कुछ करता है ना किसी को फले आ जाए, जिन्हें खतरा तुम्हें नजर आए खुदा के कवानीन की तरफ भाग के आ जाना, लपक के आ जाना। यह है ताजमो जो गैया ने मान जो हमारे यहाँ एक तरफ से ये रस्म हुई कि कुरान की तलावत से पहले आयोजित बिल्ला है मुस्तैद वाले को भी फिर खत्म किया था। तर्जमा न तना मानता हूँ पता तना मान सब आदा ना सलाम खासदा ना सलाम मान यानी उसकी अहमियत इस वजह का एतराज हो रहा है तना मान यहाँ तक तो ये सिर्फ ये रस्म और आगे ये मजबूत ताजी यहाँ से निकला हुआ है ना। नीचे गले में डाल दीजिए, मकान के बाहर की धो के फेंक दीजिए। ये ताजी क्या है, ये यही से मर गया है अंदर से। आप देखते हो कि अजीब और थोड़ा बात में से कोई आयुर्वे गर्द से इस रब के कानून की तरफा के लिए रब से अलग आपने जहां भी कोई मकान जो सीधा हो जाए उसको आपने फिर से मुहतम शासन बनाना हो कि आप इस इमारत को गिराते हैं इसकी बुनियादों तक तो फेर देते। ये तकलीब होती है जगह है, तकलीब नहीं होती। ये उस तमीर के लिए जरूरी है कि ऐसे किया जाए। हर बनाए कहना सा बाधा को नहीं अव्वल आ बुनियाद रहा जीवन को नहीं। जमीन में दाना बीज की तरह जब आप दे देते हैं, चार दिन के बाद देखिए तो वो जानवर खत्म में होते ही फट गया होता है। आप उसके बाद कह देंगे तो हाँ ये तो गया हो गया, बिल्डिंग से जो गिरा रहा है उसके मुताबिक ये कहेंगे कि आप ये तो कह रहा है, कहा नहीं। अगर ये कायदे और कानून के मुताबिक ये हो रहा है तो इस बीज का फटना, इस नाम का बिछाना है, ये तकरीर एक कानून के लिए हो रही है। सबक कहते हैं इस किस्म का किसी चीज को फाड़ना तो उसमें से एक जिंदगी नई निकला है। सलाह में आ जाए फौरन इस लक्ष्मण माँ देने वाले के सवाल में कि जिसके है जिसे जगाहर तहलीर कहा जाता है वो एक नई तहलीर के लिए होती है। ये जो तुमने इन फसलों को इनका वीडियो से गिराया है लुटाया है, जिनके दिल में जज्बे इंतकाम आ रहा है, जो समितियों के हरारे हैं, उन्हें मान के दस्तखत किया उन्हें पता नहीं है। ये तकलीर तो एक नई तामीर के लिए है, उन्हें मालूम नहीं कि विश्वास से क्या बना देगी ये नई तामीर जो है। ये है जो सुधार बिल्डिंग पे जो गिरा रहा है उसके मुताबिक ये कहेंगे कि आप ये तो भय रहा है, कहा नहीं। अगर ये कायदे और कानून के मुताबिक ये हो रहा है तो इस बीज का फटना, इस नाम का जो फैना है, ये तकरीर एक तामीर के लिए हो रही है। फलक कहते हैं इस किस्म का किसी चीज को फाड़ना जो उसमें से एक जिंदगी नई निकला है। कुल आऊ जो गरज बिल फलक पनाह में आ जाओ फौरन उस लक्ष्मण माँ देने वाले के सवाली ने मौकम की कि जिसके है जिसे बजाहर तकरीर कहा जाता है वो एक नई तामीर के लिए होती है। ये जो तुमने इन सल्तनतों को इन तहजीबों को गिराया है लिटाया है, इनके दिल में जज्बा इंतकाम आ रहा है, ये समझते हैं कि हमारे यहाँ इन्होंने आन के दस्तखत किया, इन्हें पता नहीं है कि ये तकरीर तो एक नई तामीर के लिए है। इन्हें मालूम नहीं कि ये क्या से क्या बना देगी ये नई तामीर जो है। ये है वो खुदा जिसकी पनाह में आओ, जिसकी हिफाजत में आओ, वो खुदा की जिसकी दस्तखत जिसकी तकरीर के अंदर भी तामीर मजमर होती है। इन चीजों से आओ पनाह में, उसकी हिफाजत में, उसके कानून की हिफाजत तलाश करो। किन चीजों से? अजीब और गरीब चीजें आ रही है बराबर में। अभी अजीब वाले मन जैसा मैंने पहले भी कहा था, आखिरी दर्द है। आज मुझे आज वक्त की पाबंदी से इजाजत दे दीजिए। क्या पता है फिर ये मौत आए या ना आए, आखिरी तीर से है, मुझे तस्वीर से बयान कर लेने दीजिए, इजाजत है आपको। बंद करिए किस चीज से हिफाजत ले आना चाहिए। मिन शर मा खलक, दो लफ्ज अजीजा ने मन फलसफा का पाले भी लोग जानता है कि सबसे ज्यादा जहन इंसानी को जिस चीज में पे के ताब में रखा वो खैर और शर का मसला है, गुड एंड ईवन का सवाल है। वो अलिकमा एक जो बताया जाता है बहुत पुराना अगस्ताइन का, और वो ये है वल्सफे में कि अगर शर या ईवन दुनिया में खुदा की मर्जी के मुताबिक है तो खुदा खैर नहीं हो सकता, शर के लिए किया है उसकी, और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ मौजूद है तो कादर मुतलिक नहीं हो सकता, कैसे मिटा नहीं सकता। तो पूछिए बताओ, आप हैरान होंगे, मैं समझता हूँ संस्था के पाले दिन इसे जानते हैं। अलमारियों की अलमारियों कोठे भरे हुए हैं किताबों के, इसी के ऊपर लिखेंगे। दो लफ्जों में कुरान ने सारा मसला हल करके रख दिया। उसने कहा है मिन शर्र मा खलक, जो कुछ तखलीक खुदाबंदी है ये इंटिजिकली अपनी जात के अंदर ना खैर है ना शर है, इनका इस्तेमाल है जो इन्हें शर और खैर बना देता है। जहर के दो कतरे मरने वाले में नई जिंदगी पैदा कर देते हैं, इसके बाद से क्या उसी के 50 कतरे जिंदगी को खत्म कर देते हैं। पानी जैसी मुद्दे हजार की एक दो गिलास पी लिए तो आपकी जिंदगी देती है, उसी पानी में डूब के मर जाता है आदमी। हरारत में गरीबी के ऊपर दारो मदार है हमारा, लेकिन जिस दिन के 98 से ऊपर पहुंच जाती है उस दिन बुखार जाते हैं उसे। सुबह से शाम तक इस आग से इतने अजीब और गरीब हम काम लेते हैं, उसी आग में जब उंगली पड़ जाए तो उसको वो जलाकर रख देती है। आग, संख्या, पानी अपनी जात में न खैर है न शर है, इन्हें जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक उनका नतीजा खैर और शर होता है। मीन शर ला खलक, कि जो कुछ तूने कायनात में पैदा किया है हमें इससे बचा कि हम उसे इस तरह इस्तेमाल करें कि उसका नतीजा शर ज्यादा हो जाए। अब सल्तनत मिली है, हुकूमत मिली है, दौलत की परावानियां आई है, ये सब कुछ आया है ना, ये चीजें बड़ी जरूरी है इंसानी जिंदगी तमद्दुन तहजीब के लिए, लेकिन यही तो वह पानी है जहां आगे डूबती है उनमें, ये सब कुछ मिलने के बाद ये कहा कि अब हमें इससे महफूज रखना कि हम इनको इस तरह से इस्तेमाल करें कि इससे शर का पहलू पैदा हो। और वो बात बड़ी आसान है, उसके कवानीन के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए, खैर ही खैर, उसकी खिलाफ वर्जी करके इस्तेमाल कीजिए, हर शायद शर है। तो ये जो है ताबूत हिफाजत में रखना, जो कुछ पैदा किया है उसके शर के पहलू से, इसके माने ये है कि हम जो कुछ भी हमें ये हासिल हो रहा है या हासिल हो उसे तेरे कानून के मुताबिक खर्च करें, ताकि ये खैर ही का पहलू हमारे सामने आए। ताबूत क्या होता है, वो किस चीज के अशियाए कायनात के इस्तेमाल के गलत तरीके से कि जिसका नतीजा शर पैदा होगा। आप देखते हैं फारसी तदाबीर बिरादरा ने अभी क्या क्या है, जहां कहीं तुम्हें कोई चीज भारी पड़े इसलिए भाव के उसके बेहतर तामीर करके दो, जो कुछ हासिल हो उसे इस्तेमाल इस तरह करो खुदा के कानून के मुताबिक के नतायज खैर बरामद हो। ये तो हुआ जो कुछ हासिल हुआ है उसकी परावानियों में कहीं तुम जाकर अफराद की तरफ जाकर उनकी परावानियों को मैं गर्व न कर दे, जैसा पानी ज्यादा पी लेना आदमी मर जाता है, दूसरी तफरीक भी तो होती है दूसरी तरफ कि इन अशिया का ना होना भी तो इंसान के लिए तबाही का मूजिब होता है, जहां पानी की फरावानी से ज्यादा पी जाने से मर जाता है वहां पानी ना होने से भी तो आदमी मरता है। मीन सर रे वासे तिल ऐजा वाकत, दूसरा पहलू शर का यह अजीजा ने मन गौर कीजिएगा कहां ले जाता है कुरान, इन अशिया की फरावानी की तरफ ले जाता है तो कहा वहां भी एक शर का पहलू जाता है, याद रखे दौलत की फरावानी को भी दूसरी तरफ شر واسط اذا وقت یہ وہ ہے وہ چلنے دے. آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے تب ہو جاتی ہے. جن چیزوں پر انسان کی پرورش اور لکھو نما کا دار و مدار ہے جب وہ نہ ہو ادھر افراد کے ساتھ ہونا تھا ادھر ان کا معدوم ہو جانا ان کا غائب ہو جانا ہے. کہا دوسری طرف یہ بھی کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ سامان نشو و نما کے معدوم ہو جانے سے جو اندھیر کھا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے انسان کے وہ شر جو ہے وہ بھی نہ کہیں آنے پائے. ہمارے دولت کی افراد ہو اس میں بدبختی نہ پیدا ہو یوں محتاجی نہ کہیں زیادہ ہو جائے کہ سامان نشو و نما کے معدوم ہو جانے سے دنیا اندھیر ہو جائے ہمارے ساتھ ایسا بھی نہ ہو جائے. ہمارے پہلے دور کے اندر تباہی آئی فراوانی سے اور اس کے بعد ساری تباہی ہماری آئی ہوئی ہے اس چیز سے کہ سامان نشو و نما سے بھی ہم محتاج ہو چکے ہیں. اور کرتے جائیے گا جن جن چیزوں سے اس نے کہا تھا پریکاشنری لائیے جو بتائے تھے کہ محتاط رہنا کس طرح ایک ایک کر کے آ گیا اس کے بعد ہمارے ہیں اس نے تو پہلے سے باری کر دیا ہوا تھا کہیں ایسے نہ کر دینا. آگے ومن شر النفاثات فی العقد یاد رکھو اس قسم کے منافق آ جایا کرتے ہیں جماعتوں کے اندر کہ جو ہی تم نے کسی محکم چیز کا ارادہ کیا طے کیا فیصلہ کیا ڈٹرمینیشن کیا ریزالو کیا کہ یہ کرنا ہے وہ آ کر کسی نہ کسی طرح سے ایسی پھونک مارتے ہیں کہ تمہارا ارادہ متزلزل ہو جائے. ہمیں اس سے بچنا. یہ باہر والے نہیں ہوتے یہ اندر والے ہوتے. تمہارے عزائم کی محکم جرح جو ہیں ان کو ڈھیلا کرنے کے لیے ایسی جماعتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی جو اس قسم کی پھونک ماریں گی. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ساتھوں کے لیے کیا چیزیں کہی گئی. بس ایک پھونک مار دے رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب عزم سلیم دل سے اس میں ہی سب کو شبہ پیدا ہو جائے اس میں ہی کمزوری واقع ہو جائے اس کے بعد تو آپ ایک قدم ہی آگے نہیں اٹھا سکتے. چاہتا کہ جماعت کے اندر سے ان سے محتاط رہنا اور جماعت کے باہر ایک اور چیز قوتوں کی ہوا کرتی ہے کمین کر رہے ہاتھ میری سزا حسن عجیب چیز. یہ حسد ہوتا ہے کہ درختوں کی کسی ٹہنی کو تنے کو اس طرح سے چھیل لینا کہ وہ چھلکا نہ اس کے کام کا رہے نہ تمہارے کام کا رہے. جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے. رسک تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی ملے. اور وہ حسد یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہ ملے گی ساتھ لیکن اس کے پاس نہ رہے. سب سے بڑی تباہی جو آئی ہے امت مسلمہ کے برادران عزیز وہ اس چیز سے آئی ہے. تفصیل میں جاؤں گا تو مجھے لمبی تاریخ میں گزرنا پڑے گا. وہ قومیں جو سبا شب اسلام لے آئی تھی جن کی تہذیبوں کو جن کے تمدنوں کو جن کی حکومتوں کو آپ نے تباہ کیا تھا یعنی بادل کی تھی وہ ان کی جگہ صحیح نظام لانے کے لیے ان کے دل میں انتقام کا جذبہ تھا آپ کے خلاف. اب اس کے بعد مسلمان تو وہ ہو گئے لیکن انہوں نے سوچا اس کے بعد یہ کہ یہ نظام یا یہ اسلام جو ہے
हम तो उसे नहीं लाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे इनके पास भी ये कुछ ना रहे। ये आपका मौजूदा इस्लाम इस तरह से गलत है। ये है वो असद का जज्बा जिसने आपको तबाह किया था, तो छीन के रख दो इनको। उन्हें पता था कि जिस चीज ने इनको गालिब किया है हमारे ऊपर, ये इनका ये निजाम है कुरानी, वो चाहते ये थे। ये नहीं उन्होंने रश किया कि जैसा निजाम मिलता है हम भी उसको अपना लें। नहीं, जज्बा इनके काम था। मैदान जंग में जो शिकस्त पाई थी, उन्होंने आकर दीन के मैदान में वो शिकस्त दी उनके, कि जिस चीज की जनाह पर ये हम तो इस तरह से गालिब आए हैं, वो चीज उनके पास बाकी न रहे। अजीज अलमान कुरान खुला दिया, खुद इस कुरान को अपनाया नहीं, आपके पास ले जाने दिए। देखा एक लफ्ज असद ने कहा तक बात कर, चील के टोरा कर दिया, इसके भी किसी जान का नहीं, खुद तो उन्होंने लेना ही नहीं था, आपके पास न रहे। कहा ये भी होगा, बहुत मोहतात रहना, जब ये चीजें आए तो उसके लिए एक ही इलाज है कि फौरन भाग कर कानून खुदाबंदी के किले के अंदर हिफाजत में आ जाया करो, ज्यादा से ज्यादा इस चीन कवानीन की और शिकायत किया करो। ये है तरीका इन तमाम तखरीबी कुवतों से बचने का। निजाम तुमने कायम किया है, महफूज ये इसी सूरत में रह सकेगा कि तुम ये कुछ करो और दूसरी प्रचार तरजीज या एकाजी तरजीज जो बताई मैं रहा वही उन आउजों बरबिन्नास मलिक इन्नास इलाहिन्नास सारे कुरान की तालीम का निचोड़ बराजराने अजीम तीन आयतों के अंदर, सारा निजाम इसके अंदर। कौन से तीन गोशे हैं जहां इंसानियत को एक्सप्लॉइट किया जाता है? रोटी का गोशा, इकोनॉमिक सिस्टम जिसे कहते हैं, जू ही ये इंसानों के हाथों में आया, दूसरे इंसानों के ऊपर दुनिया तंग हुई, अब जो उनसे जीता है करा लीजिए। मोहताजी तो गुलाम होता है। पहला मसला रोटी का मसला, दूसरा मसला सियासी इकतदार का मसला। सियासी इकतदार हाथ में ले लीजिए, फिर कानून के जोर से नचवाइए। और तीसरी चीज मजहबी रूहानियत का तक, इस फरेब ने बता दीजिए आवाम को और उसके बाद फिर जेजी ले आकर आइए। ये पहले दो से भी ज्यादा सख्त होता है संभव। हुकूमत के खिलाफ तो फिर भी कभी कभी बगावत करता है। ये गुलामी की जंजीरें तो इंसान के कल्बो दिमाग के ऊपर मुसलत होती है। गुराम रस्सी तोड़ा कर भागना चाहता है। इनके यहाँ कैफियत ये है कि अगर हजरत साहब की निगाह बदल जाए तो गिर गिड़ाता है, रोता है, माफी मांगता है कि जरूर मुझे रादा दरगाना कर दीजिएगा। इतनी लोकल जंजीरें और तीन ही गोशियां बरादराने अजीब जंजीरों के, रोटी के मसले में मोहताज किसी को करके रब बन जाए, सियासी इकतदार हासिल करके मलक बन जाए, रूहानी इकतदार हासिल करके इला बन जाए। कहा ये तीनों के तीनों बातिल, दुनिया में कोई और नहीं है, रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास सिर्फ होगा। क्या वीजा ने मन सुलट के आगन सारी तालीम या नहीं? यही कुछ कहता चला आ रहा था ना कुरान। پھر انداز کیا کہ اس کو محیط کل بنا دیا, میرا تیرا, اس کا اس کا, اس قوم کا اس قوم کا نہیں, پوری انسانیت کو ہر قسم کی نئے غلامی سے آزادی دلا دی. تین آیتوں نے قرآن کریم کی برابر حق ہے, آیتیں بھی کیا ہے تین جگہوں کے دعوت بھی, ہر قسم کی غلامی سے نئے انسانیت کو چھڑا دیا. رب الناس, مرج الناس, الہ الناس, بات ختم ہو گئی. الہ چھوٹی بھی اس کے ہاتھ, سیاسی اقتدارات بھی اس کے ہاتھ میں, روحانیت کی الوہیت کی قوتیں جتنی بھی ہیں وہ بھی اس کے لیے. اور جب وہ ناس کا ہوا تو کوئی ناس میں کوئی ایسا رہا ہی نہیں جس کے پاس یہ آ جائے, کیونکہ دادا نے انسانوں میں سے تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا یہ کچھ, اور انسانوں سے ان کے کوئی اور ہے نہیں. یہاں مخلوق معاملہ ختم کر دیا میرا کرانے جی, رقص کام میں رقصی کرانے کے لیے یہ کام پیدا کی تھی, یہ نظام پیدا کیا تھا اس چیز کے شر سے. جو پہلی چیزیں تھیں ان سے بھی زیادہ ایک ٹائپ آتا ہے, من شر الوسواس الخناس. وسواس وسوسہ, یہ ہوتا ہے دبے پاؤں اس طرح سے کسی کا آنا کہ آہت نہ ہونے پائے. جیسے شکاری شکار کی تلاش میں جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے نا کہ آہد نہ آنے پائے, اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اس قسم کی قوتیں آئیں گی تو معلوم ہی نہیں تمہیں ہوگا, آہد تک بھی ان کے طریقہ سکتے ہیں, کریں گی کیا. یہی ایک ذرا سی بات کان میں ڈالی اور پھر خناس کے معنی ہوتا ہے چپکے سے دبے پاؤں واپس چل کے پسیدہ ہو جائے. وہ قوتیں, ہاں وہ آپ کی نفسیاتی قوتیں ہوں, سیاسی سازشوں کی قوتیں ہوں, روحانی دلوں کی اس قسم کی قوتیں ہوں, آئیں تو شکاریوں کی طرح آپ دیکھ لیے گا ایک لفظ کے انتخاب میں ہوتے ہیں یہ سب شکاری. کہاں اسے احتیاط سے آتے ہیں کہ کہیں کھٹکا نہ ہونے پائے, ورنہ تو شکار بگڑ جاتا ہے نا, یہ کھٹکا ہونے نہیں رہتے. اور کرتے یہ ہے کہ کوئی چیز ذرا سی کان میں پھوٹی اور اس کے بعد یوں واپس چلے جاتے ہیں, واپس جانے کے بعد چھپ جانا کہ پتہ ہی نہ چلے. ان قوتوں سے حفاظت میں جانا, اللہ ہی یہ وسلے تو فی صدور الناس. یہ غلط قسم کی تعلیم جو ہے یہ ہے جس کی طرف یہ چیز آ گئی. آہت نہ ہونے پائے, شکاری ہو, ایکسپلائڈ کرنا چاہے, پتا چلے نا, اور دلوں کے اندر ایک چیز اتارتا چلا جائے. یہ ہے کسی قوم کا نصاب تعلیم بدل دیجئے, قوم کی قوم بدل جاتی ہے. عزیز آنے والے, یہ وہ وساوت ہیں جو صدور الناس کے اندر اس طرح اتارے جاتے ہیں کہ شکار کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے پکڑ لیا اس نے. اس کی حمد و ستائش میں کتیجے پڑتا ہے یہ تو کہ ایسا انتظام کر رکھا انہوں نے. قلوب کے اندر یہ چیزیں وہ اتار کے چلے جاتے ہیں. کہا اس سے بچے, یہ سارے آپ کے یہاں کی تعلیم جتنی یہ نبی مدارس میں آپ کے یہاں ہو رہی ہے, یہ ساری کی ساری آپ کو قرآن سے بیگانہ کرنے کے لیے ہے. جتنی تعلیم مغرب کی طرف سے آپ کو آ رہی ہے, یہ ساری فرض انسانیت سے بیگانہ کرنے کے لیے. یہ ہے جو صدور الناس کے اندر وساوت ڈالی جاتی ہے, ان پر سخت بنی, پتہ ہی نہ چلے کہ کس وقت پکڑا گیا. کون کون سے یہ کرتے ہیں, منل جنت ولناس, اپنے ہوں, فارینرز ہوں, खुद अपने यहाँ से भी ये करेंगे, जिनसे तुम मानूस होते हो वो भी करेंगे, कि जिनसे तुम मानूस नहीं होते हो बाहर के रहने वाले होते हैं। हमारे साथ तो हुआ ही नहीं, इस किस्म की गलत तालीम कि जिसमें हमारी उम्मत हमारी मिल्लत कौम के नौजवानों को सीनों को इन वसावत से इस तरह से भर दिया हुआ है जीवन मन, इन बेचारों को पता ही नहीं चलता कि हमें कहां लिए चले जा रहे हैं। गैरों ने भी तो किया और अपने ने भी तो किया। सारी तारीख हजार साल की आपकी इसी चीज का रोना रोने की बात है। तो याद रखो ये चीजें तुम्हें तबाह करेंगी। अजीज आने मन सूरह अन्नास कुरान करीम की आखिरी सूरत भी आज बहमदही ताला खत्म हो गई। वो सिलसिला है दराज ये आज से 7 साल पहले मुसलसल शुरू किया था, 7 साल के बाद अल्लाह की तौफीक से आप अजरात के इंतजाम सुनने से आज इस कदम पे पहुंचा। मेरे जहन में था कि दर्द की तकलील के बाद इस दर्द से मुतल्लिक कुछ बातें आप अगर आपसे करूं, लेकिन क्योंकि आप हजरात ने यह तय किया है कि इस दर्द की तकलील की तकरीब आइंदा इतवार को मनाई जाए, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जो कुछ मैंने आज इस दर्श के खात्मे पर आप अहबाब की खिदमत में गुजारिश करना था उसे उस तकरीब में अपने खिताब की शक्ल में आपके सामने पेश करूं। वो चीजें तो मैं आइंदा इतवार को पेश करूंगा। अब आइए हम इस सिलसिलाए जर्रों की तकमील पर अपनी दिली आरजुओं को कुरान करीम के अल्फाज में दुआ की शक्ल में बहजूर रब्बुल इज्जत ये कहते हुए पेश करें कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहू अला लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والسلام عليكم برابر العظيم. الحمد لله على ذلك کہ قرآن کریم کے مسلسل درس کا جو سلسلہ ستمبر 1960 میں 25 دسمبر میں خود میرے مکان پر شروع ہوا تھا، آج بتوفیق ایز دی 21 دسمبر 1960 اتوار کے دن صبح کے وقت بحسن خوبی تکمیل تک پہنچا، یہ سب خدا کی توفیق سے تھا۔ میں اس زبان سے اس کا شکریہ ادا کروں۔
जो आरजुएं दिल में थी वो दुआ की शक्ल में इससे पेश कर सामने आ गई। वस्सलाम।
بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي ومكرمي ڈاکٹر صاحب میری عزیز بہنوں اور بھائیوں سلام و رحمت یوں تو انسانی زندگی سلسلہ روز سب ہی سے عبارت ہے لیکن اس سلسلہ میں بعض کڑیاں ایسی بھی آ جاتی ہیں جنہیں بجا طور پر سرمایہ حیات اور حاصل زندگی قرار دیا جا سکتا ہے۔ میری زندگی میں آج کا دن اس سلسلہ کی ایک ایسی ہی کڑی ہے۔ اس دن کی یاد بقایا زندگی میں میرے لیے وجہ بالیدگی روح اور باعث شادابی قلب ہوگی۔ میں عزیزان گرامی قدر قرآن کریم کا ایک ادنا طالب العلم ہوں اور یہی میری متاع حیات اور سرمایہ افتخار ہے۔ میری زندگی کا ابتدائی دور قدامت پرستی کی تنگناؤں میں گزرا۔ کبھی مسجد کے حجروں میں کالا اقولوں کی دس و جدل میں اور کبھی خانقاہوں کے خلوت قدوں میں منازل تصوف کی رہنوردی میں۔ یہ وہ دور تھا جس میں چشم بندو گوش بندو لب بند معراج علم اور بمائست زیادہ رنگی کن گرد پیے مغان گوئت اوج روحانیت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب میرے شعور کی آنکھ بیدار ہوئی تو فکر و تدبر کی تابندہ شعاؤں نے جمود کی ان درخانی سنوں کو آہستہ آہستہ پگھلانا شروع کیا جو قرآن تقلید اور اندھی عقیدت کے یخ خانہ کی فطری پیداوار تھی۔ میں عقل و فکر کے چراغ گل کر دینے والی ماضی پرستی کے تیرہ و تاریخ غاروں سے نکل کر پیشائے فہم و فراق سے اپنی راہیں آپ تراشنے کی دعوت دینے والی تاب ناک وادیوں میں کس طرح پہنچا، یہ ایک طویل داستان ہے جسے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ بہرحال ان وادیوں میں پہنچ کر جب جمود و تعطل کی برفانی سنیں پگھلنی شروع ہوئی تو ان کے نیچے دبی ہوئی سکون کو شبہات کی چھانکیں یوں ابھرنے لگیں جس طرح عرق لیمو سے لکھے ہوئے حروف کاغذ کو آگ کے سامنے لانے سے ایک ایک کر کے نمودار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دور میری زندگی کا تلخ تری زمانہ تھا۔ اس میں وہ جنت مجھ سے چھن چکی تھی جو فسون خود فریبی کی تخلیق تھی اور پھر بہت سے یقین آفریدہ کی طرف جانے والا راستہ نگاہوں کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ریب و تشکیل کے سانپ متواتر ڈستے چلے جاتے تھے اور ان کے زہر کا تریاق کہیں سے میسر نہیں آتا تھا۔ میرے سابقہ ایمان کا ایک ایک گوشہ اعتراضات کے طوفانوں کی نظر ہوتا جا رہا تھا لیکن دلیل و برہان کی کوئی دیوار ایسی نہیں تھی جو ان کی یورشوں کو روک سکے۔
मैं तहय्युर की इन वादियों में बरसों मारा मारा फिरता रहा। अदम यकीन के मिस्त्रों से मेरा कल्ब बरंगे गुंचा लगरेजे जराहत और फुकदान ईमान की बर्फ सामानियों से मेरा सीना परवरदा आगों के मासे बना रहा। ये वैसा ही दौर था जिसके मुतालिक इकबाल ने कहा था कि इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोजो सागे रूमी कभी जेजो सागे राजी। सतू को सुबहात की इन तलातम खेजियों में सिर्फ एक रोशनी का मीनार था जिसने मेरी कश्ती उम्मीद को नजरे तूफान होने से बचा लिया। ये मीनार, ये लंगर, ये साहिल था हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर मेरा यकीन मोहकम। जब एतराजात की इस करादंगेज मौजें खुदा वही आखरत पर ईमान को मुतजलजल करने के लिए उठती तो सिर्फ ये ख्याल इनके रास्ते में हायल हो जाता कि जिस इंसान की सीरत ऐसी बुलंद हो वो ना तो खुद फरेबी का शिकार हो सकता है ना फरेब दही का मुर्तकिब। इसलिए उसने जिन हकायक के मबनी पर सदाकत होने की शहादत दी है उन्हें परखे बगैर झटक नहीं देना चाहिए। ये था अजीजान मुहतरम सीरत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान जिसने मेरी जिंदगी के धारे का रुख मोड़ दिया और मैंने सादका तवहमात से खाली जहन होकर कुरान करीम को इल्म बसीरत की रोशनी में आज खुद समझने की कोशिश शुरू की। इस हिम्मत तलब सफर जिंदगी और सबर आजमा मराहल हयात में मुझे किस किस किस्म की संगनाख जमीनों से गुजरना पड़ा और इनमें मुझे कहां कहां से रहनुमाई मिली, कैसी कैसी कोहकनी और खारा शिदासी से मेरा वास्ता पड़ा और मैंने किस जिगर सोजी और नफस गुदाजी से रास्ते के इन मवानियात को दूर किया। ये दास्तान फिर तवील है और सुरक्षित तलब। इस वक्त मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देने पर इत्तेफाक करूंगा कि मैं करीब 30 साल से मुसलसल कुरान करीम पर गौर व फिक्र करता चला आ रहा हूं, जिसका नतीजा ये है कि मैं आज बतमाम इज्जो नियाज लेकिन बतमाम हतम व यकीन इस हकीकत के ऐलान करने के काबिल हूँ कि खुदा की इस किताब जलील के एक एक लफ्ज की सदाकत पर मेरा मुहकम ईमान है और ये ईमान इल्म व बसीरत पर मबनी और दलाइल व बुराहीन पर उस्तवार है। इस नेमत कुबरा के हसील पर जहाँ मेरा सर नियाज बहजूर रब्बुल इज्जत सिज्दा-रेज़ है वहाँ मेरी जबीन शौक उस ज़ाते अक़दस उस चिराग़े आख़रीनश उस साहबे दीन जाने ईमान की बारगाहे अज़मत माद में सरापा के पास है जिसके हुस्न सीरत की जलवाबारियों ने मेरी निगाहों को वो नूरे बसीरत अता कर दिया जिससे मैं कुरानी हकायक पर यकीन मोहकम से आज तेरे नौ मुसलमान होने के काबिल हो गया। और सिर्फ मुसलमान होने के काबिल ही नहीं बल्कि खुदाए जिंदा की इस किताब जिंदा के मुताबिक जो हर दीदा दीना के लिए बहार गुस्तन और हर गोशे नसीहत नयोश के लिए ईद शनीदन है, इकबाल की हम नवाई में ये कहने के काबिल भी कि फाश गोयम आके दर दिल मुजमरस ईद किताब नीस चीजें दीगर चीजें दीगर तू बजान डर रख जहां दीगर शवद जहां क्यों दीगर शुद्ध जहां दीगर शवद। جب اس کتاب عظیم کے حقائق حجلائے ذہن کو منور کرتے ہیں تو اس کا ایک ایک ذرہ جو سے انشرق کے روک سے سب آفتاب ہو جاتا ہے، اور جب اس کے بسائر خلوت گاہ قلب کو وسط آشنا کرتے ہیں تو خون رگ حیات کا ایک ایک قطرہ دعوائے انل بہر سے آفاق دیر و کائنات در آغوش ہو جاتا ہے۔ قرآن عزیزان من مغربی دنیا کی جنتر منتر کی کتاب یا خالی پند و نصائح کا مجموعہ نہیں، یہ وہ ضابطۂ قوانین ہے جس کے مطابق یہ سارا کارگاہ کائنات اس حسن و خوبی سے چل رہا ہے۔ یہ وہ میزان عدل ہے جس میں افراد اور اقوام کے اعمال تلتے اور ان کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو قوم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہے اسے اس دنیا میں بھی سرفرازیاں اور سربلندیاں نصیب ہوتی ہیں، اور وہ مستقبل کی خوشگواریوں اور ساتھ کامیوں سے بھی نوازی جاتی ہے۔ جو اس راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتی ہے وہ یہاں بھی ذلیل و خوار ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی روسیا اور شرمسار۔ خسرت دنیا وال آخرہ ذالک ہو الخسران المبین۔ قرآن کریم پر غور و تدبر سے میں نے عزیزان گرامی قدر اس ارشاد خداوندی کو بھی سمجھا کہ جس شخص کو قرآن فہمی کی توفیق عطا ہو جائے اس پر یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اس ارشاد خداوندی کی روشنی میں میں نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں۔ چنانچہ میں گزشتہ قریب 30 سال سے ہی اپنی نصاب کے مطابق اس فریضہ کی ادائیگی میں بھی مصروف ہوں۔ میری تصانیف، میرے مقالات، میری تقاریر سب اسی فریضہ کی ادائیگی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت درس قرآن کریم کو حاصل ہے کہ اس میں قرآنی حقائق اس طرح بار بار سامنے آتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ ذہن کی گزرگاہوں سے آگے بڑھ کر قلب کی گہرائیوں تک میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ میں اس سلسلہ کو 1950 کے قریب کراچی میں شروع کیا، یہ وہاں مسلسل جاری رہا تا آن کے میں 1958 میں لاہور منتقل ہو کر چلا آیا اور اس سلسلہ کو یہاں جاری کر دیا۔ ابتدائی 2 سال قرآن کریم کے بنیادی تصورات پیش کرنے میں صرف ہو گئے، اور اس کے بعد 1960 سے اس کا مسلسل درس شروع کر دیا گیا۔ للہ الحمد کے 7 سال سے زائد عرصہ دراز کی ہفتہ واری نشستوں میں یہ مبارک و مسعود سلسلہ وہیں حسن خوبی اب تکمیل تک پہنچ گیا ہے، اور آج کی لبریز تبریک و تہنیت تقریب اسی جشن کا اسی کا جشن مترف ہے۔ میں جب 17 سال کی ان گزری ہوئی منزلوں پر نگاہ باز گشت ڈالتا ہوں تو میرا سر نیاز بدرگاہ رب الناس بسط تسلیم و تکریم جھک جاتا ہے کہ اس نے مجھے اس قدر حوصلہ طرف پر حاضیت کے بعد اس جوئے شیر کے لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن فہمی کے سلسلے میں اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں جو قوانین و احکام اور اصول و اقدار مذکور ہیں وہ محکمات ہیں، یعنی ان کا مفہوم متعین ہے، لیکن ان کی تائید و شہادت میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ تسبیحات و استعارات کے انداز میں سامنے لائے گئے ہیں، جنہیں اپنی اپنی علمی سطح کے مطابق سمجھا جا سکتا ہے۔ ان حقائق کا تعلق خارجی کائنات اور انسانی زندگی کے مختلف جوشوں سے ہے. اس سے ظاہر ہے کہ ان حقائق کے ادراک کے لیے کائنات اور انسانی دنیا سے متعلق مختلف علوم تک دسترس ضروری ہے. لیکن یہ بھی واضح ہے کہ کسی ایک فرد کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کہ اسے ان جملہ علوم پر کامل دستگاہ حاصل ہو. اسے چند ایک علوم پر عبور اور دیگر علوم کی مبادیات سے واقفیت تو ہو سکتی ہے, وہ جملہ علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا. جناب علی, قرآنی حقائق کا کما حق ادراک ایک فرد کا نہیں ایک جماعت کا کام ہے. لہذا کسی فرد کو بھی اس کا دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ قرآنی حقائق کے متعلق اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. اور دوسرے یہ کہ خود علم انسانی کی کیفیت یہ ہے کہ جو حقائق کائنات منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں ان علوم کی وسعتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, یا یوں کہیے کہ جو علم انسانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے قرآنی حقائق نکھر اور ابھر کر سامنے آتے چلے جاتے ہیں. چنانچہ اس سیمن نے خود قرآن کریم میں کہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم خارجی کائنات اور خود انسانی دنیا میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے تا آنکھ قرآن کا ہر دعویٰ حقیقت بن کر سامنے آ جائے. اس سے واضح ہے کہ جو انفس و آفاق کے حقائق مستور بے نقاب ہوتے جائیں گے قرآن کی صداقت سے مستور ہوتی چلی جائیں گی. لہذا انسانی تاریخ کے کسی دور میں بھی یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ قرآنی حقائق کے متعلق جو کچھ سمجھا جانا تھا وہ سمجھا جا چکا ہے. اس میں نہ اصلاح و ترمیم ہو سکتی ہے نہ حق و اضافہ. جس طرح علوم سائنس کے متعلق ریڈنگ یونیورسٹی کے طبیعیات کے پروفیسر ڈاکٹر جیمز آرنلڈ نے کہا ہے کہ دنیا سائنس میں کسی موضوع پر حرف آخری انسان کے لیے چھوڑ دینا پڑتا ہے, اسی طرح قرآنی حقائق کے متعلق بھی بجا طور پر کہا جائے گا کہ اس زمن میں ہر سے آخر آخری انسان کے حصے ہی میں آ سکتا ہے. یہ وجہ ہے کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کریم کے متعلق جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ ہر سے آخر ہے اور اس میں سہو و خطا تک کوئی دخل نہیں. یہ اتہام و تفہیم قرآنی کی بہرحال ایک انسانی کوشش ہے اور ہر انسانی کوشش کی طرح اس میں اصلاح و ترمیم کی گنجائش. میں اسے پھر دوہرا دوں کہ میں نے جو ابھی عرض کیا ہے کہ قرآنی حقائق کو ہر دور کے انسانی علم کی سطح تک سمجھا جا سکتا ہے, تو یہ ان حقائق کے متعلق ہے جنہیں قرآن کریم نے اپنے دعوے کی تائید میں استعارات کے انداز میں بیان کیا ہے. جس کتاب کو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہونا تھا اس کے حقائق کو تشبیہات و استعارات کے انداز ہی میں بیان کیا جا سکتا تھا. جہاں تک انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کا تعلق ہے اسے قرآن نے متعین انداز میں بیان کر دیا ہے جس میں نہ ابہام ہے نہ اختلاف, وہ نہایت متعین اور صاف اور سادہ ہے جس سے نہایت آسانی سے مستفید کیا جا سکتا ہے. یہاں تک قوانین کا تعلق ہے, قرآن کریم میں بجز چند احکام باقی قوانین کے لیے صرف اصول دیے ہیں اور اسے ہر دور کی ملت اسلامیہ پر چھوڑا ہے کہ وہ ان اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے جزوی قوانین خود مرتب کرے. یہ اصول ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے और उनकी हदूद के अंदर मुरतब करदा जुजी कवानीन जमाने के तकाजों के मुताबिक बदलते रहेंगे। इसी को इस्लामी फिका या शरीयत कहा जाता है। पुरानी ममलकत में किसी फर्द या अफराद की किसी जमात को हक हासिल नहीं होता कि वो फिकही कवानीन मुरतब या नाफिज करे। यही वजह है कि इस्लाम में मजहबी पेशवाइयत का तसव्वुर नहीं। मुसलमानों में यह तसव्वुर उनके दौरे मलूकियत का पैदा करता है जब दीन ने मजहब की हैसियत अख्तियार कर ली थी और मजहब और सियासत दो अलग अलग शोबे बना दिए गए। इन गैर मुतबद्दल असूलों को कुरान करीम ने अकदार या वैल्यू से ताबीर किया है। इसीलिए कहा है कि इन्ना अनजलना हो फी लैलतुल क़द्र, हमने इसे उस दौर में जब दुनिया आसमानी रोशनी से महरूम हो चुकी थी नई अकदार का हामिल बनाकर नाजिल किया। गौर फरमाइए अज़ीज़ाने मन कि कुरान करीम ने इस एक लफ्ज क़द्र में कितने अजीम हकायक की दुनिया को चिमटा कर रख दिया है। हैवान और इंसान में इम्तियाजी खत कदर या वैल्यू का तसव्वुर है। हैवान सिर्फ अपनी तबीयी जरूरियात का एहसास रखता है, वो अकदार का तसव्वुर रख ही नहीं सकता। जब किसी माशरे में अकदार का तसव्वुर गुम हो जाए या मध्यम पड़ जाए तो वो माशरा इंसानों की बस्ती नहीं रहता, हैवानात का हजूम बन कर रह जाता है जहाँ सिर्फ जंगल के कानून की कार फरमाई होती है। कुरान करीम ने अपने अहकाम की तरह इन असूलों अकदार को भी नहायत वाज़े और मुतय्यन अंदाज में बयान किया है ताकि इस बात में किसी किस्म का इबहाम और इख्तलाफ न रहे। इन्हें हर शख्स जो कुरान की जुबान से वाकिफ हो बअदना गौर व तदब्बर नहायत आसानी से समझ सकता है। लेकिन कुरान फहमी के सिलसिले में एक मरहला ऐसा भी आता है जो पुल सराद के अवामी तसव्वुर के मुताबिक बाल से बारीक और तलवार से तेज होता है कि वहां से अगर पांव फिसले तो इंसान सीधा जहन्नम के जड़ों में जा गिरे। वो नाजुक तरीन मरहला ये है कि अगर कोई शख्स किसी खास नजरिया या तसव्वुर को पहले से जहन में लेकर कुरान की तरफ सिर्फ इसलिए आता है कि उसे इससे अपने नजरिया या तसव्वुर की तारीफ मिल जाए तो उसे कुरान की बारगाह से ऐसी फिटकार पड़ती है जो उसके लिए हर दो जहां में वजहरी स्याही होती है। कुरान को अपने ख्यालात के ताले रखना सिर्फ अजीम है। ये अपना दरवाजा किसी के लिए खोलता है जो कल्ब निगाह की पाकीज़गी के साथ खाली ज़हन होकर उसके आस्थान आलिया पर दस्तक दे। हमारा क़दामत परस्त तबका मॉडर्न मुसलमानों को ये कहकर मतमून करता है कि ये मगरब के नजरियात के जहन में रखकर कुरान से उनकी तायीद हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी अपनी हालत ये है कि ये उन तमाम नजरियात मोतकदात को जिनकी सनद सिर्फ इस कदर है कि वो कौम में मुतवारिस चले आते हैं, ईमान का दर्जा देकर कुरान को इनकी तायीद में पेश करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए कि अगर मॉडर्न तबका का ये जुर्म है कि वो अपने जहन में पहले से कुछ तसव्वुरात कायम करके कुरान की तरफ आते हैं तो हमारा ये असलाफ परस्त तबका इस जुर्म का उनसे भी ज्यादा शिद्दत से मुर्तकब होता है। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि मकतबो मुल्लाओ असरार किताब कोरे मादर जादो नूरे आफ्ताब, तो इससे यही मकसूद था। मॉडर्न तबका तो फिर भी कोई एक आध नजरिया मुस्तार लेकर कुरान की तरफ आता होगा। ये हजरात जिंदगी के असूलों से लेकर छोटी छोटी जिंदियात तक हर बाब में متعین معتقدات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جن میں ذرا سی تبدیلی بھی کفر کے مرادف سمجھی جاتی ہے اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں. سوچیے کہ جو اس طرح آنکھیں بند کر کے چلے اسے سورج کی روشنی کیا فائدہ دے سکتی ہے. میں برادران عزیز پوری دیانتداری سے عرض کرنے کی ضرورت کر سکتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کی, میں اسے صرف سمجھتا ہوں. جہاں تک متوارث نظریات کا تعلق ہے انہیں میں نے اس زمانے میں قرآن کی کساتی پر پرکھنا شروع کر دیا تھا جب میں قدامت پرستی کے ظلمت قدوں سے عقل و فکر کی وادیوں کی طرف آیا تھا. اور جہاں تک عصر حاضر کے پیدا کردہ نظریات کا تعلق ہے ان میں سے ایک کو میں نے حد سے تنقید بنایا اور قرآن کی روشنی میں پرکھا ہے. لہذا میرے فہم قرآنی میں کہیں غیر شعوری طور پر میرے خیالات کی آمیزش ہو گئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن میں نے دانستہ کبھی ایسا نہیں کیا. یہ اس لیے کہ اس کے لیے میں اپنے آپ کو خدا کے ہاں جواب دے سمجھتا ہوں. ذمہ داری کا یہی شدید احساس ہے جس سے میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن کے متعلق جب بھی کچھ لکھنے کہنے کے لیے لب دکھائی کرتا یا کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہوں تو میرا دل درس جاتا ہے, میری روح پر کپکپی تاری ہو جاتی. یہ کچھ تو عزیزان ایمان میں نے اپنے متعلق کہا. آپ احباب جس التزام سے میرے درس میں شریک ہوتے رہے اور جس جذب و انہماک سے اسے سنتے رہے ہیں وہ قرآن کے ساتھ آپ کی والہانہ وابستگی کی دلیل ہے, اور اس کے لیے آپ مستحق ہزار تبریک و تہنیت ہیں. لیکن اس سلسلے میں وہ بنیادی نقطہ جسے میں اکثر اپنے درس میں بیان کیا کرتا ہوں اسے آج پھر دوہرا دینا ضروری سمجھتا ہوں, اور وہ یہ کہ قرآن کی تعلیم صرف نہاخانہ ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے نہیں, اس کا صحیح مقام قلب انسانی کی گہرائیاں. اس لیے کہ ذہنی سطح پر تیرنے والی تعلیم ایک قسم کا فکری نشاط کو پیدا کر سکتی ہے, انسان کے قلب و نگاہ میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی. اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک انسان کے قلب و نگاہ میں تبدیلی پیدا نہ ہو, جب تک اس کی اقدار کے پیمانے نہ بدلے, اس کی سیرت و کردار میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے ان بصیرت افروز الفاظ میں بیان کیا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جب اس طرح قلب و نگاہ مسلمان ہو جائے تو پھر قرآن کے الفاظ میں یہ زمین بدل جاتی ہے, یہ آسمان بدل جاتا ہے. قرآن کریم میں جس طرح آج سے 1400 سال پہلے یہ صلاحیت تھی کہ وہ اس جہان مستعار کو بدل کر اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں لے آئے, اس میں آج بھی اس کی صلاحیت بدستور موجود ہے. اس لیے کہ قانون کائنات نہ کبھی پرانا ہوتا ہے نہ فرسودہ. قرآن آج بھی یہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہے کہ گر زمینی آسمان سازت ترا, گر زمینی آسمان سازت ترا, اور آنچے حق می خواہد آ سازت ترا. کتنی عجیب تھی, آنچے حق می خواہد آ سازت ترا خستہ باسی اس توارت می کند, پختہ مثل کوہ تارت می کند, اور نو انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آخر میں میں اس سلسلہ ابراز کی تکمیل کر ایک بار پھر بحضور رب العزت سجدہ ریز ہوں کہ اس نے مجھے ان سب آزما مراحل کو بحسن و خوبی طے کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ہی بسد عز نیاز عرض کرداز کہ اس درج میں میں نے جو کچھ قرآن کی منشا کے مطابق پیش کیا ہے وہ اسے سبا کے استحکام عطا کرے اور اگر کوئی بات نادانستہ منشاء خداوند منشاء قرآنی کے خلاف کہہ دی گئی ہو تو اسے محو کر دے. اقبال کی ہم نوائی میں میری دعا یہ ہے کہ گر دلم آئینہ دے جوہرس گر دلم آئینہ دے جوہرس ور بحرفم غیر قرآن اس مرس پردہ نامو سے سدرم چاپ کن خیادہ را یہ خارم پاک کن. لیکن در درے اسرار قرآن سکتا ام با مسلمانہ اگر حق دکھتا ام در عمل پائندہ تر گردہ مرا آدم ایسا نم جہر کر بن مرا ربنا تقبل منا اللہ کا انت سمیع العلیم.
گنبد سیاہ ٹھہرا گیا یہ صدر تھی نام الگ کے اندر بھیجتے عمر پردہ اٹھا کر اندر کیا دیکھا ایک گنبد انتہا کا تاریخ ایک جانب آگ جل رہی ایک جانب پلٹ کر اس گیڑی کو دیکھا حقیقت میں گیڑی طالب انسان میں سمائی ہوئی سر مسلے گنبد اٹھا کیا کئی کام کا لہنگا آج سر کا ناچنے کا بسورے کے دلے کاشت کیا زبان کے باہر نکلی ہوئی رائے کا تقریبی ہے دونوں ہاتھ زمین کے پیسے جی ہے سب زبان ایک جانے بیٹھے ہوئے سانس رہی ہے گزاروں کے پورے اداس عالم یاد ایک پہلو میں لگ کے شراب سے رکھی شراب کا مچھر اٹھایا نہیں سے لگایا بس تک کی گئی ایک جوان کی جان پکڑ کر ماں اس تکواں سے بانا شروع کیا پھر تاریخ میں بتا دی دھیان میں سے نکلنے لگا جیسے ہی عمرہ کے چہرے پر لگا ڈالی رنگ اڑاری عمرہ کے چہرے سے نکل گیا بصیرے سے اچھی ہو گیا. میرے دل دوستو اس کے بعد جو میں بات آپ سے کہنا چاہوں گی وہ صرف یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں ہم نے بتائی یا بیان کی جاتی ہیں جب میں ان کو غور سے دیکھتی ہوں تو مجھے یہ تمام زندگی اور یہ تمام انسان دوستوں کو میں بتے ہوئے نظر آتی ہوں. ایک وہ جو دوسروں کی محنت کا محاسب بغیر کچھ کیے ہوئے محض اپنی چالاکی سے کھا جانا چاہتی ہوں اور دوسرا وہ محنت کا کرتا ہے جو صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو خوش ہو رکھتی ہے. ان لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے ان لوگوں کو کسی طرح اپنی حالت پر مطمئن کرنے کے لیے ایسی ہی بے گھرے کا کہانیاں بنائی گئی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا 14 سال کا وکیش اس قسم کی کہانیوں سے بھرا ہے خواب اس شکل میں ہو خواب میں روایات کا متدس نام لے لیا جائے یا انہیں کچھ بھی کہا جائے جب آپ غور فکر کر کے دیکھیں گے تو انہیں بری کیسی نظر آئے گی کہ انسانوں کو اصول دے کر انہیں داخل اور بحث کیا جا رہا ہے ان کے ذہن کی طرف ان کے ذہن کے سامنے وہ چیزیں لائی جا رہی ہیں جو کہ انہیں اصول اور حقیقت سے بجانا چاہیے. اب آپ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ فخر اس بات پر ہے کہ ہماری کہ ہم جو نظام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ روحانیات پر مبنی ہے. اب آپ ان کے پیش کردہ قرآن کو دیکھیے تو نظر آئے گا کہ اس مشین سے لے کر کہانیاں ہی کہانیاں افسانے ہی افسانے کہیں سلیمان کا تخت ہے کہیں گدڑ ہے کہیں جن ہے کہیں کڑیاں ہیں کہیں ایک خدا ہے بہت خوبصورت عناصر ہیں جو کہ ہماری زندگی میں ہر لمحہ بسے دیتے رہتے ہیں. ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم کہیں جا نہیں سکتے انسان بے بس مجبور اور مشین سے ہمیں جن بھی سکتی ہے نہ وہ کر سکتی ہے نہ اسے کوئی اختیار حاصل ہے نہ اسے کوئی ارادہ حاصل ہے بس اس کا کام ضروری ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے آئے اس کو برداشت کرتا چلا جائے اس کا نام خط ہے. इसका नाम शुक्र है और इस तरह के इस्लाहत हैं जो कि हमारे यहाँ इस कदर ज्यादा है कि उनकी तरफ सिर्फ एक इशारा कर देना बहुत काफी होता है क्योंकि हम सब लोग इसे पूरी तरह वाकिफ हैं और सुधार का ये तस्वुर हमारे सामने पेश किया जाता है कि जो सुधार है और इसमें लोगों के कानों की दाँत लगाई हुई है किसी को कोई बात जो है समझने का मौका नहीं देना चाहता वो ये करता है और इस किस्म की बहुत सी बातें और इस किस्म के गैर मामूली तस्वुरात लोगों के सामने निकल के पेश किए जाते हैं और फिर उसके बाद तकाजा भी किया जाता है कि आप उनके अहम दीन और अहम इस्लाम समझे। इस दर्द में सबसे बेसिक चीज जो मुझे मैंने महसूस की वो ये थी कि यहाँ पे इंसान इस आज़ादी का तस्वुर अपने दिल में लाता है इसे आज़ादी में फिक्र और गौर मिलती है वो सोच सकता है समझ सकता है और आप देखते हैं कि हर एक चीज होती है या हो रही है इसका एक मंत्र की जवाब भी है। आप अगर पूछना चाहेंगे ये तमाम चीजें इस तरह क्यों तो इसके लिए एक जवाब मिलता है इंसान महसूस करता है कि जवाब इसकी बुद्धि से इसकी अति से पूरी तरह से पूछ कर सकता है उसे बता सकता है कि इन तमाम चीजों का मकसद क्या है। हमारे लिए सही मानवी का नतीजा ये निकला था कि हम लोग मगरब के मुफक्किरीन की तरफ देखने के लिए लगी उनके हालात उनके तसव्वुरात उनके निजाम हाल जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे की तरफ आती जा रही गैर महसूस सही चुके हमारे वो तमाम लोग जो अरबाज अक्स हैं उनकी तरफ देखने के लिए मजबूत थी उनके निजाम हाल जिंदगी चाहे फाउंडेशन हो चाहे कोई और किसी और निजाम की सूरत में हमारे सामने लाए उनकी उनकी फिक्र उनका सोच जो कुछ भी वो करते हैं हम मजबूत थे कि हम उसके साबित करें कि जो उसके मुकाबले के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं और चुके उम्मीद हो सकती थी और कौन ये ख्याल कर सकता था कि इस किस्म की कहानियों की और इस किस्म की जो चलता अफसाना की धारा या कुरान एक कितनी मुआवजा हकीकत को अपने सामने लिए हुए है कि जब इसे पेश किया जाता है तो इंसान ना सिर्फ ये कि इंसानी फिक्र इससे मुतासर होकर जी लेती है बल्कि हर शख्स के कहने के ऊपर मजबूर हो जाता है कि वाकई कादर मुतलक के कलाम को ऐसा ही होना चाहिए। ये जिंदगी के हर शोबे से मुतासर करता है और हर किस्म के कवानीन हमारी जिंदगी के सामने रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी का आलमगीर तस्वुर लोगों को इस तरह मुतासर करने के लिए एक कौम और एक इंसानी जिसम की तरह अपने आप को महसूस करें जो कुरान का दिया हुआ है और किसी को आम करने के लिए रस्सी रखेंगे दुनिया में महसूस किया है। देखने की बात है कि इनमें हुनर की इतनी तरक्की के बाद आज तक हमारे यहाँ के लोग जो हैं या मगरब की अफवाह जो है रेशियल प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते काले और गोरे की कमी खत्म नहीं होती। कितनी अजीब बात है कि वो लोग जो एक तरफ चुरैया तक पहुँच जाते हैं चांद तक पहुँच सकते हैं जिनकी तहसील के अरिंग को देखते हुए इंसान भारत में जीत जाता है फिर क्या चीज है और हम लोग तो उसके पास भी नहीं हो सकते। वो लोग जब किस किस्म के मसाइल में आते हैं तो इंसान अधिक बदंदा रह जाता है कि उसे क्या चाहिए जिन्हें ये मसला इतना गहरा क्यों हो गया कि काले और गोरे का फर्क जो है ये नहीं मिल सकता और ये मसला इतना गहरा क्यों हो गया कि वो कौन है जिन्होंने किसी तरह बाली किसी तरह बाला कर आ गई है ऊपर आ गई है वो ये चाहते हैं कि वो कौन है जो कि पीछे रह गई है पत्ती में रह गई है उन्हें दबा जाए उनका इतनी भी कर दें उन्हें काबिल रहने दें कि वो उनके इशारे के ऊपर जिस तरह भी चाहे नाच की रहे और जो चीज भी बड़ी बातें हैं और जो चीज की बड़ी दुखी है और जो चीज में बड़े रेजोल्यूशन के पेश होते हैं उनके पास कोई भी हरकत नहीं आती कोई कानून सामने नहीं आता कोई ऐसी चीज सामने नहीं आती। और ये तो एक तरफ वो लोग हैं जो कि ज्यादा जिम्मेदार नहीं है दूसरी तरफ आप अपने इन लोगों की मजबूती पेशवाइयत की तरफ आइए तो आप देखेंगे कि हर नाराज मिलने से जो आवाजें आती हैं कि दो लोग होगी जिसमें आपको डाला जाएगा या आपके गुनाहों का बदला होगा ये कोई दौलत नहीं है जिसमें हम गिरफ्तार ये बेचैनी ये इसराज ये तन्हाई और ये ख्याल कि जो कोई गिरा अगला सच या मुआशरे का अगला कदम उसको रौनता हुआ चला जाए ये कम्प्लीट इनसिक्योरिटी जिसे कहना चाहिए जिसे हर शख्स महसूस करता है ये क्यों कयामत नहीं ये रोटी का हर वक्त फिक्र कल क्या होगा परसों क्या होगा हम क्या खाएंगे हम क्या पहनेंगे जो कि हमारी जिंदगी के तकरीबन चौबीस में से 20 घंटे में उसे जारी रहते हैं। ये तो कयामत नहीं है जो हर लम्हा हर वक्त हमारे दामन के साथ सुन रही है और हमारे भोजन तमाम सवालाई से सुन रही है और वो कैसी जन्नत होगी जिसका जिक्र वहाँ पे आता है, वहाँ पे ये खाने को होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये जन्नत तो हम आज भी देखते हैं, जो उस व्यक्ति पैमाने पर नहीं, मगर उन सब लोगों को हासिल है जिन्होंने किसी तरह आज इतनी ताकत इकट्ठी कर रखी है कि जिस तरह चाहते हैं लोग उनके सामने झुकते चले जाते हैं। और इस जैसे जिंदगी बहुत से शोबों में बटी हुई, एक शोभा है वो रूहानियत के लिए है, एक तसव्वुफ के लिए है, एक इस चीज के लिए है, एक खाने के लिए है, एक लम्हा आपके लिए गौर की चर्चा बीच में आ जाता है, इस किस्म के ख्याल है। लेकिन अब कानून तो ये बता रहा है कि अगर अल्लाह मियां ने ये तमाम चीजें, ये तमाम जज्बात और ये सब चीजें लिखी, अगर इनको दबाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए बनाना था, तो आपने इस तमाम तकलीफ का मकसद क्या, क्यों ना उसने हमें इसी तरह बना दिया जिस तरह के लिए आम हैवानों को बनाता है, कि उनकी जिबिलत से रख दी जाती है कि वो निकलना नहीं से चलते रहे, उसके बाद वो कभी उस महीस से नहीं हटे। जिस तरह से कैसी मछली दिखा दिया है कि वो फलाम काम फलाम वक्त करेगा, इस तरफ जाएगा, जो कुछ भी उसकी तरफ वही कर दिया गया है वो उसके मुताबिक काम करती रहती है, तो क्यों नहीं आपको ऐसा ही इंसानों को भी बना दिया जाता, वो भी इसी तरह जिंदा रहते, इसी तरह काम करते, उनकी तमाम जिंदगी यही है। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान की जिंदगी में इख्तियार, इरादा, जो वो चाहता है अपने ख्याल और इरादे के मुताबिक करता है, और फिर भी है कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे सवाल किया जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो यही उसकी जिम्मेदारी है जो उसे इंतहाई बुलंदियों तक ले जाती है, और यही उसकी जिम्मेदारी है जो उसे सब तरीन मकाम तक ला सकती है अगर वो उसे पूरा करे। लेकिन हमारे यहाँ जो चालाक लोग ये नहीं करते कि वो आम इंसानों को कोई बात करनी है, उन्हें सही तौर पर ये बताना चाहिए कि भाई ये गलत है, ये सही, वो कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि माशरे का मैार बदल, यानी मैार खैर खैर को अपने अपने ख्याल किताबें रख के उसके मुताबिक उसको बना देते। अब एक माशरे में अगर कर्ज हो जाए तो सबसे ज्यादा मौजूद आदमी वो है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, तो लोग बगैर किसी प्यार, बगैर किसी इरादे, बगैर किसी और फिक्र के इसके मसलाइन की तरफ जाना शुरू करते हैं। वो कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा रुपया जमा करे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें फराहम हो सके। और मैं समझती हूँ कि कुरान का ये बहुत बड़ा इंसान है कि उसने न सिर्फ ये इंसानों को कहा है कि वो मिलकर आपस में कोशिश करें, बल्कि ये भी किया है कि नाम जुल्लाम की लैलत कदर हमें नए इकदार और नए पैमाने दिए, वो इकदार और वो पैमाने जिससे जब उनको माशरे में आम कर दिया जाए तो फिर किसी शख्स के लिए ये मौका बाकी नहीं रहता कि वो दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सके, उनकी मेहनतों के महासिल उठा सके, क्योंकि पूरा माशरा जानता होगा कि सबसे बेहतर जगह उस इंसान के लिए है जो सबसे ज्यादा मुस्तकी है और सबसे बेहतर तरीके पर अपने 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 फराइज को अदा कर। इन पैमाने में एक बड़ा अहम मसला माशियात का मसला है। लोग आज तक इस बात का फैसला नहीं कर सके कि मुआवजा किस चीज का होना चाहिए, क्या जिन लोगों के पास कैपिटल नहीं है उस नहीं के मुताबिक उनको मुआवजा देना चाहिए या इंसान की मेहनत का मुआवजा देना चाहिए, इन दोनों चीजों में से किसको क्या मकान दिया जाए, ये है हमारी तमाम मुआवजा की गहरी, क्योंकि ये बता नहीं सकती है जो कि ये मुसीबत मुझे पेश करती है। एक ऐसे उनके तमाम बदला जो है ये सतीश मनी या सुनवाई के लिए होना चाहिए, और दूसरे लोग वो कहते हैं कि नहीं, ये तमाम बदला जो है इन लोगों को देना चाहिए जिनकी मेहनत कर। और कुरान भी इसमें अपने मैार की पेश करता है, वो कहता है लैसा लिल्लज़ीन इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए तुम्हें कोशिश करते हैं। और फिर आप अपनी जिंदगी की तरफ देखिए, लोग इसमें कितने अजीब अजीब तस्वुरात के लिए आते हैं, और जब तक पुरानी समय हमारे सामने न हो हम उनका कोई खास तजिया नहीं कर सकते। जिंदगी एक नींद है, एक ख्वाब है, माया है, जादू है, फरेब है, छोटा, और फिर मगरब की तरफ जाइए तो जिंदगी बजाते खुद एक सूरत है, ऐसी कुवत है जिसे उठा लेना चाहिए, जिसे हासिल कर लेना चाहिए। ये जिसम और इसके तमाम लगात किसी जैसे प्रेम की पावन नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिले, जहाँ से भी मिले, जिस तरीके से मिले, ले लो, उठा लो। जो कोई मजबूरी नजर आता है उसे मार डालो, कुचल दो, वो कमजोर थी। इसका ये जुर्म कभी भी माफ ना करो कि वो किसी कमजोर जगह पे पैदा हुआ है। सार्वजनिक तौर पर कमजोर हो, जिसमानी तौर पर कमजोर हो, या साइंस में आगे ना हो, या उसके पास अभी में कमी ना हो, कुछ भी हो, मगर वह ऐसा क्यों है इससे माफ नहीं किया जा सकता। और बात लोग जो है अब नगरी लोग इस किस्म के सवाल आपसे मिलेंगे तो वो कहेंगे नहीं भाई कश्मीर कैसे जब हो गए देंगे कई चीजें नहीं है, बस आराम से देते रहना चाहिए और कोई काम वाम नहीं करना चाहिए इस किस्म की बात। और कुरान के जो तस्वर थे जिंदगी जिसमें से जब जो है एक कोशिश है, हम तुम्हें नवासे ढंग पहुँचाते हैं इसके लिए कि तुम अपने आप को तैयार कर सके, आइंदा जिंदगी के लिए तैयार कर सके जिसमें से तुम जाना है। और इसकी तैयारी के लिए छोटा सा वक्त है जो हमें मिला है, यही तमाम वक्त है इसमें हमें आप अपने आप को वहाँ जाने के लिए तैयार करना है। और इसको किस तरह उन्हें किस तरह सीमित बना देता ये जिंदगी और दिव्य जिंदगी, और इसके बाद जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी नतीजा निकलना है, वो तमाम का तमाम इस जिंदगी की वजह से निकलना है। ये है हमारी जिंदगी और इसकी कितनी बड़ी अहमियत हमारे सामने है। ये मादी जिंदगी, ये तमाम चीजें, इसमें कोई सुधार नहीं थी। उसके बाद एक नई जिंदगी का आगाज होगा जिससे कौन से कप्ताइन से जो कुछ भी होगा इससे बिल्कुल फर्क होगा। लेकिन इस जिंदगी को कुरान इस कदर अहमियत देता है और इसके सामने एक बहुत बुलंद पर्पज आते हैं। और ये वो पर्पज है कि जिसको ये पर्पज मिल जाए उसके बाद वो कभी जिंदगी में किसी बोर्डन या तन्हाई से तंग नहीं आ सकती, क्योंकि ये ऐसा पर्पज है जो कि ना सिर्फ इस जिंदगी में हमारे सामने है बल्कि इसके बाद की जिंदगी में भी हमेशा हमेशा हम महसूस करते हैं कि ये सफर कुछ और कुछ और कुछ और इसके आगे ये कहीं हमें कितना काम नहीं होने देता, कहीं हमारी सलाहियतों को पंच मुर्दा नहीं होने देता, कहीं हमें थक के बैठने नहीं देता, बल्कि बराबर ये कही जाता है कि तुम्हारी मंजिल अभी और भी दूर है, तुम्हें अभी और आगे जाना है, तुम्हें अभी और काम करना है, क्योंकि यही एक मुख्य की मूल्य या वक्ता है जिसके लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं। और सबसे आखिर में मुझे ये कहने दीजिए कि मैंने बाबा जी को शेर किस्म की महफिल में भी देखा है और जाने वालों को डाल देते हुए भी। इसके अलावा मैंने अदर शायरी और दीगर अलियों पर बहुत बतीस और बहुत आला किस्म के मसाइल पर महम संजीव जी और काबिलियत के साथ जिन्हें सुलझाते जिससे भी करते और कभी कभी महाज को मेरी तरह के जाहिर लोगों के साथ जबकि वो सख्त दिखते में हैं इंतहाई सख्त और सुहा से बातें करते भी देखा है और उनके एग्रेशन को बर्दाश्त करके उन्हें सही रास्ता बताते हुए भी देखा। लेकिन मैंने उन्हें कभी इतना बुलंद कभी इतना अजीब नहीं पाया जितना कि वो सख्त होते हैं जब वो कुरान की तस्वीर कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे उनकी तमाम तवानाइयां सुनत करें एक चीज में आती जा रही है और जब कुरान का जिक्र आता है तो ऐसा मालूम होता है कि बाबा जी की वो तमाम चूबियां से कह लीजिए जहानत अक्ल सलीम मिसर कर इस चीज में आ गई है, क्योंकि यही से उनका प्याम शुरू होता है और उनकी शख्सियत की सबसे नुमाया खसूसियत जो कि मेरे ख्याल में ये है कि वो बहुत ऊंचे पैगंबर हैं और उनका पैगाम जो है वो इंसानियत के लिए है, किसी खास कौम किसी खास तबके या किसी खास नौ के लिए नहीं है। ये नहीं है कि वो औरतों के लिए है या मर्दों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए है तारे के लिए है या गोरों के लिए नहीं है, गोरों के लिए है या एक खास कौम के लिए है पाकिस्तानी के लिए और पाकिस्तान के बाहर नहीं है। इस वक्त वो इस तरह से पैगंबर की लड़की से आते मेरे सामने आते हैं तो मेरी निगाहें जो है वो झुक जाती हैं और मैं उन्हें देखती हूँ कि वो अपने कमाल से कम चुके हैं और यही वो चीजें हैं जो मैंने कुरान से है।